आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय प्रभु यीशु, हम फिर से आपके नाम में जमा हुए हैं परमेश्वर की जिला देने वाली सामर्थ के उंडे ले जाने की आशा में, कि हमें अपने स्थान और स्थिति की पहचान में लाएं और हमारी जिम्मेदारियां एक बुलाए हुए लोगों के समान संसार से अलग परमेश्वर को समर्पित। प्रभु आज रात्रि इसे ग्रहण करें ताकि परमेश्वर की आशीषें हमारा मार्गदर्शन और निर्देशन उन बातों में करें जो हम करते हैं या कहते हैं, ताकि आपके नाम को महिमा और सम्मान मिले। आमीन। आज रात्रि मैं आपके साथ प्रिय लोगों में कलीसिया में वापस आने से आनंदित हूँ, और मैं जानता हूँ कि यहाँ गर्म है, परंतु मैंने बस अपनी पत्नी को टेलीफोन पे बुलाया। मैं सोचता हूँ यहाँ 90 कुछ है, 95 या 96 ऐसे ही कुछ, और यहाँ से ये कुछ अधिक गर्म है, इसलिए अब मैं गर्म मौसम का अभ्यस्त हो गया हूँ। इसलिए यहाँ आराधनालय में इस शानदार ईस्टर के समय में मैं आनंदित हूँ, और मैं ये नहीं कह सकता कि इस प्रातः मैं अपने लंबे लंबे संदेशों के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु मैं ये था कि मैंने नहीं चाहा कि आपके धैर्य को थका दूं और आज रात्रि फिर से इस पर आऊं, परंतु मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप इस पुनरुत्थान के भाग हो जाएं। देखा, मैं इस विषय में अधिक चिंता नहीं करता, बस इसमें आनंद करता हूं। कुछ ऐसा नहीं है कहीं पर भी जो आपको इससे अलग कर सके, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के राज्य में सदा तक सुरक्षित। जब परमेश्वर ने आपके ऊपर मोहर कर दी है तो आप गंतव्य के अंत तक हैं। जब सरकार पैकेट पर मोहर कर देती है, रेल रोड दरवाजे पर मोहर कर देता है, तो उस बड़े बक्से को जब तक वो गंतव्य तक ना पहुंच जाए उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता। जब परमेश्वर अपनी मोहर मनुष्य पर लगा देता है और मोहर पवित्र आत्मा है, जब वो मनुष्य को इस प्रकार से मोहर बंद करता है तो वो अनंत गंतव्य को पहुंच गया। कभी भी कुछ और कभी नहीं कर सकता, अब वापस नहीं जा सकता, क्योंकि स्मरण इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो जिसमें आप सारे समय के लिए मोहर बंद हुए। देखिए, आप सदा के लिए मोहर बंद हैं। देखिए, आप परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत काल तक के लिए मोहर बंद हैं। अब इस पर सोचें, तब आप शैतान आपको घूंसे मारेगा और वो आपसे सब कुछ कहेगा और आप पर दोष लगाएगा और यत्न करेगा कि आप सोचें कि आप नहीं हैं, परंतु उसकी ना सुने। क्या आप जानते हैं कि आप मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं? एक समय जब आप जिन चीजों से बहुत प्रेम करते थे, अब आप उनसे और प्रेम नहीं करते। आप जानते हैं कि आपने परमेश्वर के हर वचन का विश्वास किया है। आप देख चुके हैं कि परमेश्वर ठीक हमारे मध्य में कार्य कर रहा है पूरी सिद्धता के साथ, कि वो महान मैं हूँ है। आपने ध्यान दिया कि उसके नाम में जब कभी कुछ कहा गया, कभी नहीं हुआ कि उसके नाम में भविष्यवाणी हुई और ठीक वही घटित हुआ। यहाँ तक कि विज्ञान, अखबार, चित्र, कैमरे, लेखक, हर चीज को इसे पहचानना पड़ा। कोई मतलब नहीं, चाहे वे इसे चाहे या नहीं, परमेश्वर ने उनसे करवाया। जो भी हो, देखिए, वे जान गए। अब छोटा झुंड होने के नाते स्मरण रखें, ये कोई बड़ा झुंड नहीं जिसके लिए वो आया। छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता की यही इच्छा है, समझे। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, झटका मारेगा इसके पहले कि हम एक सेवक का अभिषेक करें, और ये बहुत ही स्तब्ध करने वाला है, परंतु केवल कि आप जान जाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक उतनी ही गिनती है, परंतु मैं ये आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि किन्हीं लोगों ने यहाँ पर कभी दोगले पशु होते देखे हैं, जिसमें कि मैं विश्वास नहीं करता, परंतु मैंने ये देखा है, और मैंने देखा कि नर के शुक्राणु लेते हैं एक छोटे से धातु पर छुआ कर, जैसे छोटे दांत की करदनी से, और इसे संगमरमर के टुकड़े पर रखते हैं और उन लेंसों को घुमाते हैं जो इसे बड़ा कर देते हैं। मैं नहीं जानता कि कितने गुना, जब तक कि वो शुक्राणु, जबकि आप स्वाभाविक आंख से कुछ नहीं देख सकते, साधारण कांच से नहीं, परंतु जब इसे बड़ा किया जाता है 100 या 150 गुना, तो आप उस शुक्राणु को छोटी सी बूंद, हो सकता है 50 से 100 छोटे शुक्राणु चारों ओर भाग रहे हैं। मादा में भी बहुत से अंडे आते हैं शुक्राणु में, और जब इन्हें आसपास लाया जाता है, अब पहले दो मिलते हैं और जुड़ते हैं, और 10 लाख में से केवल एक ही जीवित रहने वाला है। क्या आपने इस पर कभी सोचा है? वे एक से ही जीवाणु हैं और एक से ही अंडे, वे दोनों में से हैं, परंतु केवल एक ही जीवित रहने वाला है। और ये तय नहीं है कि कौन सा वाला पहले मिलता है, क्योंकि कभी कभी अंडा वहाँ पीछे और जीवाणु शुक्राणुओं के मध्य में, और वे एक दूसरे के पास आएंगे। और ये तो बुद्धि है कि जाने कि ये लड़का या लड़की होने जा रहा है, या लाल सिर या काला सिर वाला या जो भी हो। ये तो परमेश्वर का चुनाव है, ये और कुछ नहीं हो सकता। चुनाव, यहाँ तक कि स्वाभाविक जन्म चुनाव है कि ये लड़का या लड़की होने जा रहा है, या ये जो कुछ भी होने जा रहा है। और जब ये छोटा जीवाणु इस छोटे अंडे में चला जाता है और छोटी पूंछ बाहर रह जाती है, तो ये बालक की रीढ़ को आरंभ करता है। ये जिस भी पशु का है या ये जो भी है, और बाकी वे लाखों जीवाणु, लाखों अंडे, लाखों जीवाणु, और केवल एक ही जीतता है। सब एक से, परंतु परमेश्वर चुनाव से चुनता है कि क्या जीवित रहने जा रहा है, और बाकी नष्ट हो जाते हैं। 10 लाख में से एक। जब इसराइल ने मिस्र छोड़ा, उन सब ने एक ही भविष्यद्वक्ता के संदेश पर विश्वास किया। उन्होंने मूसा के द्वारा चिन्ह देखे, प्रत्येक ने उन्हें देखा, और उनमें से प्रत्येक मिस्र से बाहर आया और लाल सागर में से होकर निकला और मूसा का बपतिस्मा लिया, और हरेक ने परमेश्वर की सामर्थ को उस पर उतरते देखा। जब उसने आत्मा में गाया, जब मरियम ने खंजड़ी बजाई, किनार पर इधर उधर दौड़ी, हरेक ने हर रात्रि स्वर्ग के आकाश से ताजा मन्ना खाया, प्रत्येक ने आत्मिक चट्टान से पिया जो मारी गई थी, और 20 लाख लोगों ने मिस्र छोड़ा, और कितने प्रतिज्ञा के देश तक सफल हुए? दो, 10 लाख में से एक। वे सब कहाँ से थे? यीशु ने कहा वे नष्ट हो गए। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में 30 वर्ष तक मन्ना खाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि वे सब मर गए। आज रात्रि संसार में 50 करोड़ मसीह हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को सबको मिलाकर। यदि यीशु उस उठा लिए जाने में आता है उसके अनुसार जो मैंने अभी अभी कहा, तो वहाँ संसार में से 500 लोग गायब होंगे इस उठा लिए जाने में। और ये तो संभवतः प्रतिदिन है, सारे राष्ट्रों में गिने, इनकी कभी नहीं गिने जाएंगे। इसलिए ये किसी भी समय हो सकता है। ओ मसीहो, आओ परमेश्वर के हथियार बांध लो। हम जो जानते हैं वो करें कि कैसे उसकी सेवा करें, उससे प्रेम करें, और उस महान समय के लिए प्रतीक्षा करें। अब कोई बड़ी भीड़ लाखों की नहीं होगी जो इस पीढ़ी से निकलकर उसमें संग चले, ऐसा नहीं हो सकता। अब याद रखें, प्रतिदिन एक पीढ़ी का अंत होता है, प्रतिदिन। जैसा कि नूह के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा, जहां 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। परंतु प्रतिदिन किसी के लिए 40 वर्ष समाप्त होते हैं, किसी के लिए, समझे। और प्रतिदिन बहुत सारे राज्य में मोहर बंद होते हैं, और एक दिन अंतिम दिन आ जाएगा। अब हम निश्चित हो गए, जबकि हम अपने सही मनोस्थिति में हैं, और कलीसिया में और लोगों के मध्य में जहां पवित्र आत्मा ने स्वयं को हमारे संघ में प्रमाणित किया है, हम निश्चित हो जाएं कि हर चीज ठीक है और उसके सामने ठीक बने रहें। रुकिए नहीं, विश्राम न करें रात और दिन, जब तक कि जीवित करने वाली सामर्थ आपको संसार की चीजों से बाहर न ले आए और परमेश्वर के राज्य में न ले आए। और आप जो सच में परमेश्वर के राज्य में लाए गए हैं और परमेश्वर के आत्मा से जिलाए गए हैं, कितने आनंदित हैं। आनंद के आंसू हमें अपने घुटनों पर होना चाहिए, दिन के और रात के। परमेश्वर ने जो किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि सभा में हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। हमारे साथ प्रिय भाई यहाँ भाई कैप हैं, वो हमारे पास नाज़रीन कलीसिया से आए हैं, और मैं सोचता हूँ ये ठीक बात है। भाई कैप, वो चाहते हैं कि आज रात्रि हमारे द्वारा उनका अभिषेक किया जाए, हाथों के रखने के द्वारा। हमारे पास कागज नहीं है कि जो किसी को दिए जाएं, तब भी हम मान्यता प्राप्त जैसे हम कागज रख सकते हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं कि एक सच्चा अभिषेक सेवक उसके कागज स्वर्ग में है, समझे, और उसके पास अधिकार है कि बाइबल का प्रचार करे जब तक परमेश्वर उसके जीवन को बाइबल से प्रमाणित करता है। हम विश्वास करते हैं यही उसके प्रमाण पत्र हैं। और कानूनी रीति पर भाई कैप नाज़रीन कलीसिया में उनका अभिषेक हुआ है, परंतु आज रात्रि वे चाहते हैं प्राचीन और आदि उन पर अभिषेक के लिए हाथ रखें कि संदेश को ले चलें। क्या ही महान बात है। मैं सदा से जब से ट्यूसान में था मैंने सुना है भाई कैप की शानदार रिपोर्ट है। यहाँ हमारे कृपालु भाई नेविल की सहायता में जो ज्योति की इस मशाल को दृढ़ता पूर्वक थामे हुए हैं, जैसे ये दो मनुष्य थाम सकते हैं। हमने भाई नेविल पर हाथ रखे हैं, परंतु भाई कैप के ऊपर नहीं। और मैं उन सेवकों को चाहता हूँ भाई जैक्सन और वे, यदि वे लोग यहाँ पर हैं, और भाई रूडल और कलीसिया के प्राचीन, यदि वे लोग यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए आएं और भाई कैप के ऊपर अपने हाथ रखें। और अब हम बाइबल में पाते हैं कि उन लोगों ने इसी प्रकार से किया, उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे और फिर उन्हें अलग भेजा। और इसी प्रकार से तिमोथियस के साथ किया, कहा इस वरदान के द्वारा जो तुझ में था अपनी नानी लुइस से। उन्होंने इसको देखा कि इस मनुष्य में वरदान है, फेस्टुस के द्वारा हाथ रखने के द्वारा आया। अब बाद के दिनों में भाई लोग, बाद के दिनों की वर्षा के भाई उन मिले जुले लोगों के द्वारा मिला, उन्होंने सोचा कि वे इसे दान को दे रहे हैं ये करने के द्वारा। नहीं, वरदान तो उसमें पहले ही था, उन्होंने बस उस पर हाथ रखे एक स्वीकृति के समान, और उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने पहले ही उसमें वरदान रखा है, और हाथों के रखने के द्वारा उन्होंने इसकी स्वीकृति की। और ये मनुष्य यहाँ इस कलीसिया में, जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये उनके प्राणों को जिलाने वाली सामर्थ्य के द्वारा पकड़े हुए हैं। यदि आप भाई लोग थोड़ा सा यहाँ आए, भाई रूडेल और आप बाकी लोग यहाँ कलीसिया में हैं, और प्राचीन और साथ की दूसरी कलीसिया जो आसपास हैं, कि आकर भाई कैप के ऊपर हाथ रखें ताकि उसे हमारी स्वीकृति के द्वारा अभिषेक मिले इस भक्त मंडली के सामने, और प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने को बाहर भेजें जहाँ कहीं भी परमेश्वर उसे बुलाए। वो जन्म के द्वारा पहले ही हम में से एक है, वो हम में से एक है क्योंकि उसने संदेश का विश्वास किया है। वो हम में से एक है क्योंकि उसने वचन की सच्चाई के लिए पक्ष लिया है। और हम चाहते हैं कि भाई कैप को कानूनी रीति पर अभिषेक करें आपके सामने हाथों के रखने के द्वारा, कि वो हम में से एक है। ठीक है भाई रूडल, भाई कैप, भाई नेविल, भाई जूनियर जैक्सन, कोई भी सेवक जो यहाँ पर है, मुझे नहीं मालूम कितने यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ कि वे स्वयं अपनी सभाएं आज रात्रि करते हैं, इसलिए सीधे यहाँ आए भाई कैप। भाई हंटर कहाँ है, और वे न्यूयॉर्क से, भाई टोनी, मैं समझता हूँ वे वापस चले गए। कोई भी जो दूसरे यहाँ हैं हमारे साथ हैं, क्यों हमें प्रसन्नता होगी कि आप यहाँ आए और यहाँ अब हमारे साथ खड़े हों, एक मान्यता के समान कि भाई कैप का होने के लिए विश्वास करते हैं। भाई कैप को यहाँ कितने लोग जानते हैं, अपने हाथ उठाएं। ठीक है, अपने हाथ नीचे कर लें, अपने हाथ नीचे कर लें। कितने विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर के दास हैं, अपने हाथ उठाएं। हम उससे अपने भाई के समान प्रेम करते हैं। अब ये बिल्कुल सही विधि नहीं है जिसे कि हम अभिषेक कहेंगे, परंतु हम इस भक्त मंडली से चाहते हैं। मैं इस गाने को नहीं गा सकता, मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेरी सहायता करें। एक दिन नबी मंदिर की वेदी पर आ गया, और जिस समय वो मंदिर में था वो एक भला मनुष्य था, परंतु वो उज्जिया राजा के ऊपर भरोसा करता था, और वो एक भला मनुष्य था। परंतु फिर भी एक दिन मंदिर में जब उसे दर्शन मिला तो उसने कुछ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पंखों वाले सरदूत देखे, उस भवन में आगे पीछे उड़ रहे थे, और पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सामर्थी चिल्ला रहे थे। आइए भाई, जी हाँ, देखा, पवित्र 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 सामर्थी सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर बेन। और जब ये हुआ तो मंदिर के खम्भे हिल गए, और उसने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। उसने परमेश्वर की उपस्थिति में पहचाना, यद्यपि वो भी भविष्यवक्ता था, वो गलत था। उसने कहा मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, और मैं अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। और एक स्वर्गदूत उड़ा और कोयले का अंगारा लिया और उसके होंठों को छुआ और कहा मनुष्य की संतान भविष्यवाणी कर। बहन, क्या आप इस पर हमें एक स्वर देंगी, यदि आप दें? आप में से कितने इस गीत को जानते हैं, एक पद? When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When एल्डर यानी प्राचीन लोग आसपास आ जाएं और भाई कैप्स के ऊपर हाथ रखें। हम सब अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, मंदिर के खंभे फिर हिले हैं और जैसा देखा गया कि जीवन देने वाला आत्मा हमारे भाई में कार्य कर रहा है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे कि ये इसे ऊपर से अनुभव करता है, ये कहता है कि मुझे जाना ही चाहिए। हम अपने हाथ इसके ऊपर रखते हैं प्रभु, आपके प्राचीनों के समान, और उसे संगति के लिए दाहिना हाथ देते हैं और अपने हाथ उस पर रखते हैं और परमेश्वर की आशीषें इस पर उंडेलें, ताकि आप इसके होंठों का अभिषेक करें, उसके विचार का, उसका सारा कुछ, और होने पाए वो संदेश के सुसमाचार को हर दरार और कोने तक ले जाए जहां आप उसे बुलाएंगे। प्रभु, इसे प्रदान करें। हम अपने भाई को आपका दास होने के लिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे युवा भाई, वचन प्रचार करें, समय असमय फटकार डांट लगाकर, सारे संयम और शिक्षा के साथ। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप, मुझे नहीं मालूम कि आप नहीं हुए। भाई बेन यहाँ पर हैं, हमारे पास आए हैं। मैं सोचता हूँ कि ये कुछ समय से प्रचार कर रहे हैं, तो भी कानूनी रीति से इनका अभिषेक नहीं हुआ था। मैंने सोचा ये हैं, यही कारण कि मैंने इन्हें बुलाया या यहाँ इन पर हाथ रखूं। अब भाई बेन की पत्नी यहाँ कहीं है और ये प्रिय व्यक्ति हैं, ये एक महिला प्रचारक थी, और जब ये और हमारे भाई ने विवाह किया था और वो उसे आराधनालय में लाया, और जब उसने देखा और वचन सुना, यद्यपि अच्छी महिला अच्छे व्यक्तित्व के साथ, परंतु जब उसने देखा ये करना स्त्री के लिए गलत है, वो एक और हो गई और अपने पति पर निर्भर हो गई। ये सही है, ये प्रेरिताई का है, ये इस प्रकार होना चाहिए। भाई बेन टेप लेते हैं, जैसा मैं समझता हूँ, अपनी पत्नी को साथ लेते हैं, वे बाहर के स्थानों में जाते हैं, वहाँ दूर पहाड़ों में, जंगलों में, और वे ये टेप बजाते हैं और उन टेपों पर टिप्पणी करते हैं। बहुत सी बार ये भगाए गए, निकाले गए, बाहर निकाले गए। हम यही आशा करते हैं, क्योंकि वे जो मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताते हैं, दुख उठाएंगे। यहाँ कितने हैं जो भाई बेन को जानते हैं? कितने विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर के दास हैं, इस आशीष के योग्य हैं जो हम इनके लिए परमेश्वर से मांगेंगे? देखिए, ये अपरिचित नहीं है, ये हमारे साथ वर्षों वर्षों से हैं। मैं इन्हें एक नम्र व्यक्ति के समान जानता हूँ। ये मुझे पसंद करते हैं, ये बहुत सी गलतियाँ करते हैं, हम सब ये करते हैं। मैं भाई बहन के विषय में क्या पसंद करता हूँ, वे इसे ठीक करने के लिए अपने घुटनों पर चलते हैं। और जब उस दिन इन्होंने विवाह और तलाक पर सुना, वो और इनकी पत्नी अलग होने को तैयार थे, क्योंकि वो इन्हें और ये उनसे प्रेम करती है, परंतु वे परमेश्वर के वचन के संग बने रहना चाहते हैं। वचन जो भी कहे, वे बस वही चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बेन और उनकी पत्नी को आशीष देगा, उनकी सेवकाई को भी। आइए हम अपने भाई पर अपने हाथों को रखें। प्रिय परमेश्वर, हम अपने हाथ अपने भाई बहन के ऊपर रखते हैं एक चिन्ह के द्वारा कि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु कि ये आपके कार्य को करने की इच्छा रखता है कि इन ट्यूपों के साथ बाहर भेजा जाए कि इन्हें उन पहाड़ों पर लोगों के बीच में बचाए और दूर जगहों में जहां हम में से बहुत से वहां कभी नहीं पहुंच सकते परंतु फिर भी संदेश को समस्त संसार में जाना है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भाई को आशीष देंगे और उसे अपना आत्मा देंगे और होने पाए ये उस पर उतरे और उसका मार्गदर्शन करें, उसका निर्देशन करें और उसकी पत्नी उन स्थानों में जहाँ संभव है एक प्राण वहाँ पर हो और द्वार बंद नहीं हो सकते जब तक कि एक भीड़ भीतर ना लाई जाए। आप 99 को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। हर नाम जो पुस्तक में है भीतर आना ही चाहिए। इनकी सहायता करें प्रभु, जैसा कि हम अपने हाथ इसके ऊपर रखते हैं, जैसा कि इसे हम अपने साथ लेते हैं एक भाई के समान, और हमारी सहायता और प्रार्थना उनके लिए उनके साथ जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसकी सहायता करेंगे प्रभु, जहाँ कहीं भी ये जाता है, यीशु के नाम में आमीन। भाई बहन, आपको आशीष मिले। संगति के लिए हम आपको अपना दाहिना हाथ देते हैं एक सेवक भाई के नाते। भाई परमेश्वर को आशीष दे। जॉन मार्टिन अर्ल, कितने अर्ल मार्टिन को जानते हैं, कितने इनका मसीही दास होने का विश्वास करते हैं। ये हमारे पास वहाँ से आते हैं, मैं विश्वास करता हूँ मूलतः पेंटिकॉस्टल झुंड से हैं, और अब मैं सोचता हूँ ये पास्टर और आत्मनिर्भर होकर कार्य करते हैं। मैंने भाई अर्ल को मसीह का वास्तविक दास होने के समान जाना है। मैं ये कार्य को कभी नहीं भूलूंगा, बहुत से हुए परंतु एक काम भाई के साथ। मुझे स्मरण है एक रात्रि उन्होंने उन्हें बुलाया, मैं डलास टेक्सास में था, या मैं विश्वास करता हूँ ये बूमॉन टेक्सास, ठीक है बहन, और वो इसका बालक मर रहा था और उन्होंने सोचा कि ये मर चुका है, वे सांसें नहीं ले रहा था और अर्ल ने मेरे कमरे के पास आने का रास्ता बना लिया। एक पिता के समान कंधे झुकाए हुए मेरे सामने झुक गया जैसे कि मैं पलंग में था, लुड़का और उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर डाल दिए, कहा भाई मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के भविष्य रखता है। कहा मैंने सदा यही विश्वास किया है, यदि बस आप एक शब्द कहें, यदि भी मेरा बालक मरा हुआ है तो भी वो जिएगा, और उसका बालक वापस जीवित हो गया, जीवित है। क्या आप विश्वास करते हैं ये योग्य है कि संगति के लिए इन्हें अपना दाहिना हाथ दिया जाए, इन विश्वासियों का? आइए भाई हम प्रार्थना करें, हम अपना हाथ उस पर रखते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम फिर अपने हाथों को अपने भाई मार्टिन के ऊपर रखते हैं। प्रभु हम उसे भेजते हैं उन दूर दराज क्षेत्रों में जिसे तूने अभिषेक किया है कि वहाँ जाएं, जहाँ कहीं ये हो, बहुत से थोड़े से छोटे छोटे मार्ग या राजकीय मार्ग, यदि बयाबान हो, जहाँ कहीं भी ये हो, प्रभु होने पाए आपकी आशीष इनके संग रहे। हम अपने हाथों को इस पर रखते हैं जैसा कि हम इसे आदेश देते हैं कि आपकी गति और उसे अपनी आशीषें दें कि वो आत्मा जो हम पर है प्रभु उसके संग जाए और इसका मार्गदर्शन और निर्देशन करे उन खोए हुए प्राणों के लिए वहाँ बाड़ों और राजमार्गों पर। हम इसे यीशु मसीह के नाम में भेजते हैं, आमीन। और मार्टिन, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जाएं प्रभु आपके साथ। इसी उद्देश्य के लिए आपका नाम रिचर्ड है, कितने रिचर्ड ब्लेयर को जानते हैं, कितने उनका परमेश्वर का दास होने का विश्वास करते हैं। वो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल कलीसिया के झुंड से आए हैं और भाई ब्लेयर, मैं उनकी महान बुलाहट को याद करता हूँ। मुझे वो समय याद है जहाँ भाई ब्लेयर मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक आत्मा उनके साथ कार्य कर रही थी, उसे बता रही थी कि मैं झूठा हूँ। और जबकि वो वहाँ सभा में बैठे हुए थे और पवित्र आत्मा ने पलट कर पुकारा और वो टूटने के लिए तैयार थे और वही इन्हें इस रूप में ले आया। और मुझे उनकी प्रिय पत्नी स्मरण है, एक दिन मुझे बुलाया, उसने कहा भाई ब्रैनम मैं विश्वास करती हूँ कि रिचर्ड मरने वाला है, और उसके पास मेरा विश्वास है एक रुमाल था, वो गई और उसके ऊपर रख दिया जैसा मैंने उसको कहा, प्रार्थना की और अब वो यहाँ पर है। एक छोटा बालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था या इनका लड़का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उन्होंने कोई अधिक आशा नहीं दिलाई। इसके लिए दिमागी चोट थी और यहाँ तक कि टेलीफोन की प्रार्थना के द्वारा बालक चंगा हो गया। क्या आप विश्वास करते हैं कि भाई ब्लेयर मसीह की सच्ची गवाही है? आप प्रार्थना करें कि आपकी आशीष उनके साथ जाए। भाइयों, अपने हाथ उन पर रखें। प्रिय परमेश्वर, हमारे कृपालु महान भाई को, आपका दास को प्रमाणित करते हुए, जो कि अपने ही झुंड से आया है कि उजियाले में चले, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भाई ब्लेयर को आशीषित करें जैसा कि हम उसे अपनी आशीषों के साथ भेजते हैं, और अपने हाथ रखने के द्वारा सहमति के साथ प्रभु जहां कहीं भी आप उसे बुलाएं, चाहे जो भी कार्य हो, होने पाए आपका आत्मा भाई ब्लेयर के साथ जाए, इसका मार्गदर्शन और निर्देशन करें उनके लिए जो इस संसार में नष्ट और मर रहे हैं, कि ये खोई भेड़ों को ढूंढने में सहायक हो ताकि ये उस झुंड में वापस ला सकें। ये चाहे जहां हो सकता है, इसके लिए आपके पास जो भी हो प्रभु हम मांगते हैं, आपका आत्मा इसकी अगुवाई करे इनकी जीवन की सारी यात्रा में। हम इनके भाई हैं, उनको संगति में अपना दाहिना हाथ देने के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसके साथ साथ जाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। संगति का दाहिना हाथ, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई ब्लेयर, हम 100% आपके साथ हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी सहायता के लिए कुछ भी करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या कहा? आप कौन हैं? मैरिलिन एंथोन। कहाँ? कलीसिया में। कोई भाई मैरिलिन एंथोन को जानता है? ये मेरे लिए नए हैं। ओह हाँ भाई, मुझे क्षमा करें, सालवेशन आर्मी से। ठीक है, मुझे याद है, निश्चय ही मैं इन्हें जानता हूँ। मैं इनका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा नहीं लगा इस समय। कितने इन्हें जानते हैं कि ये परमेश्वर के जन हैं? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इनके साथ कार्य करता है? अपने हाथ उठाएं। क्या आप इनके लिए प्रार्थना करेंगे? भाई हम जानते हैं कि आप एक बड़े झुंड से आए हैं, सालवेशन आर्मी, वे महान लोग हैं, परंतु सालवेशन आर्मी ने सड़कों पर महान कार्य किया है। हम नाजरीन के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते, पेंतिकॉसल कलीसिया या सालवेशन आर्मी या उनमें से कोई भी, वे लोग हमारे भाई हैं। परंतु आप देखते हैं कि हम लोग इस घड़ी के संदेश के ले जाने वाले हैं जिसमें हम रह रहे हैं। आप ये हमारे साथ करना चाहते हैं? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं जबकि हम अपने हाथ अपने भाई पर रखे हुए हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, आप ही हैं जो बुलाते हैं, आप ही हैं जो वचन को जलाते हैं ताकि वे विश्वास कर सकें, और हम अपने हाथों को स्वीकृति के रूप में अपने भाई के ऊपर रखते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि आप इसके साथ हैं और इसकी सहायता करेंगे। हम अपनी आशीष इनके साथ भेजते हैं, हम जो विश्वास करते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं और अब अपने हृदयों को जिला देने वाली सामर्थ्य में पकड़े हुए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। हम अपने हाथ भाई पर रखते हैं और अपनी आशीषों के साथ भेजते हैं ताकि आप इनका मार्गदर्शन और अगुवाई करें और इनका निर्देशन पृथ्वी के हर दरार में करें जिसके जाने के लिए आपने इनका अभिषेक किया है। आपका आत्मा इनके साथ जाए और इन्हें स्वस्थ, सामर्थ और इनकी सेवकाई में सफलता दे, क्योंकि हम इन्हें यीशु मसीह के नाम में भेजते हैं, आमीन। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। ये संगति का दाहिना हाथ है, आप जानते हैं। भाइयों इनके साथ हाथ मिलाएं, भाइयों इस प्रकार से ताकि आप लोग ठीक है। प्रभु आपको सबको आशीष दे। आप जो भी चाहें, आपका अब आपका क्या नाम है? भाई कैरल। ये भाई कैरल सिनसिनाटी से हैं। कोई भाई कैरल को जानता है? अपना हाथ उठाएं। सिनसिनाटी होने के नाते मुझे संदेह है कि कोई इन्हें जानता है। ये कहता है ये उस झुंड के साथ थे और वो झुंड स्त्रियों को अभिषेक करना चाहता है। ये इसे सहन नहीं कर सके और इन्हें उनसे नाता तोड़ना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से मैं बैप्टिस्ट मिशनरी से अलग हुआ। डॉक्टर रॉय ई डेविस, कितनों ने उनके विषय में कभी सुना है? निश्चय ही आपने सुना है। वो किसी महिला प्रचारक को अभिषेक करना चाहते थे और मैंने कहा नहीं श्रीमान। एक प्राचीन यानी एल्डर के नाते मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, जानबूझकर, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। भाई कैरल, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपकी गवाही के आधार पर और वो सत्य जिसके लिए आप खड़े हैं, हम उन महिलाओं के विरुद्ध में नहीं हैं, वे बहनें हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं कि उनका अपना स्थान है और उन्हें वहीं रहना चाहिए, समझे? और हम विश्वास करते हैं ये पुरुष की प्रिय सहायक है और किसी रीति से नहीं। हम सोचते हैं वे एक उद्धार को छोड़ सबसे महान उपहार है जो कभी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, परंतु उसका स्थान प्रचार मंच पर नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। इस आधार और परमेश्वर में आपका विश्वास, हम आप पर हाथ रखते हैं एक संगति के समान कि आकर हमारे साथ बढ़े। आइए हम इन पर हाथ रखें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, ये युवा पुरुष, मैं अब जान सकता हूँ कि ये कैसा अनुभव करता है। वास्तविक सच्चाई के लिए ये बाहर निकल गया। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, परंतु हर वचन से। इसलिए हम इस पर हाथ रखते हैं, अपनी आशीषें इस पर रखते हैं और होने पाए आपका आत्मा इसका मार्गदर्शन और अगुवाई करे और इसका निर्देशन करे इसकी जीवन यात्रा में, ये जहाँ कहीं भी आप इसे भेजें प्रभु। उसे मालूम हो कि हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसके लिए एक सहायता होंगे और उसका पक्ष लेंगे जब तक वो सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा। प्रभु इसे प्रदान करें, हम इसे यीशु मसीह के नाम में भेजते हैं, आमीन। भाई कैरल, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जिन जिन लोगों पर अपना हाथ रखते हैं, आप सब एक प्रकार से सीधा हाथ संगति के लिए दें। भाई रुडेल यहाँ कभी वैधानिक रीति से अभिषिक्त नहीं हुए कलीसिया में। कितने भाई रुडेल को जानते हैं? हम सब उन्हें जानते हैं। कितने जानते हैं कि ये परमेश्वर का जन है? प्रिय स्वर्गीय पिता, एक प्राचीन होने के नाते अपने हाथों को भाई पर रखता हूँ जो गहरे मटमेले पानी में गया। इसने अपनी एक भक्त मंडली को गिरते देखा, इसने देखा कि हर चीज हो रही है, परंतु फिर भी विश्वास किया। यद्यपि हम अपने हाथ इस पर रखते हैं और अपनी आशीषें से देते हैं और इसका अभिषेक करें प्रभु, स्वर शक्तिमान वचन के साथ और पृथ्वी के हर दरार में इसे भेजें, होने पाए इस पर हो और इसकी सहायता करें और इसे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई रुडल, आपको सदा संगति का दाहिना हाथ मिले। मैं भाई रुडल को जानता हूँ, ये मेरे अपने लड़के जैसा है। उसका पिता और मैं माँ एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और मैं जानता हूँ भाई रुडल परमेश्वर के दास हैं। मैंने इनके साथ सेवा की है। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई रुडल। उसका क्या नाम है भाई? आप कौन है? भाई मार्टिन। भाई मार्टिन, आप इन्हें जानते हैं? आपका क्या नाम है? भाई मैक कॉमस। मैं समझता हूँ यहाँ कोई नहीं है जो आपको जानता हो, परंतु ये यहाँ ये व्यक्ति इन्हें जानता है, भाई टेलर। और वो आया है इनके ऊपर हाथ रखने को ताकि ये सुसमाचार फैलाने वाला हो। भाई मकोमस, आप कहाँ से हैं? भाई मकोमस तूसान से, क्या ये ठीक बात है? और मुझे अब फोन की याद है, प्रभु की महिमा हो। क्या कहा? आपकी बहन वो अब यहाँ पर है। उस रात्रि उसके लिए प्रार्थना हुई थी तूसान से टेलीफोन के द्वारा। उसे कुछ रात्रि पहले लकवा मार गया था और अब वो यहाँ पर है। भाई मार्टिन, ये जानते हैं मित्र, कोई आश्चर्य नहीं कि वो संदेश लेना चाहते हैं। इन पर हाथ रखें भाइयों। प्रिय परमेश्वर, मैं इन सब के साथ आपके दास पर हाथ रखता हूँ और इसे संगति का दाहिना हाथ देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आशीषें कि आपने होने के लिए अभिषेक किया है, आपकी आशीषें इस पर हों और इनका मार्गदर्शन और निर्देशन करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे भाई, संगति का दाहिना हाथ और वे जो आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ हो। हाँ भाई, ठीक है श्रीमान, मैं विश्वास करता हूँ। ये भाई डेरिस, मैं नहीं, ये व्यक्ति भाई डेरिस है। भाई आप कहाँ से हैं? ब्लैक रॉक अरकनसास से। भाई इसे जानते हैं? कोई और, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ। कहा भाई ब्रीवर, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उनसे मिला हूँ इस प्रातः। और बहन वॉयल, मैंने सोचा भाई वॉयल और वे कौन इसे जानता है और परमेश्वर के जन के समान जानता है, परमेश्वर का दास। बहुत अच्छा, ठीक है। अब मेरे प्रिय भाई, इस संदेश को ले चलने वाले, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके पक्ष में खड़े होंगे, जो हम कर सकते हैं करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप भी इस संदेश को ले जाएंगे वहाँ दूर दराज जहाँ जाने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। आइए हम अपने हाथ भाई डेरिस पर रखें। प्रिय परमेश्वर, हम अपने हाथ अपने भाई पर रखते हैं और उसे संगति का दायना हाथ देते हैं और उसे यीशु मसीह के नाम में भेजते हैं कि आप इसका अभिषेक करेंगे। और उसे संगति का दाहिना हाथ दें और आपकी आत्मा इसके साथ जाती है इसकी अगुवाई और इसका निर्देशन करने, यीशु मसीह के नाम में आमीन। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ भाई एंथोनी, बहुत से भाई एंथोनी को जानते हैं, ये हमारे साथ लंबे समय से हैं। मैं स्वयं उन्हें मसीह के दास के समान जानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये समर्पित युवा पुरुष है। इनके ऊपर भी कभी भी वैधानिक रीति से हाथ नहीं रखा गया, इन्हें नहीं मालूम था कि ये आ रहा है मित्रों समझे, परंतु इस समय इतना ही अच्छा है जितना कोई भी, इसलिए हम भाई एंथोनी पर हाथ रखने जा रहे हैं और इन्हें संगति का दाहिना हाथ दें। परमेश्वर को ही अभिषेक करना है, ये केवल उनके जानने के लिए है और आप जानते हैं कि हम इस भाई के लिए विश्वास करते हैं और इससे प्रेम करते हैं और संदेश में ये हम में से एक है और हम चाहते हैं कि इस पर परमेश्वर की आशीष हो और यही हम सब इस पर चाहते हैं। आइए जब इस पर हाथ रखते हैं तो हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, ये नम्र छोटा आपका इटालियन दास प्रभु आज रात्रि ये आता है कि इस पर हाथ रखे जाएं और वैधानिक रूप में इनकी संगति और दहना हाथ बढ़ाया जाए कलीसिया से होते हुए। प्रभु आपका महान सामर्थ इस लड़के को पृथ्वी के भाग पर भेजे और दरार जहां आपने इसे बुलाया है होने पाए, ये लोगों को पाप और रोगों से छुड़ाए और प्रभु ये जीवन के सारे दिनों में आपकी सेवा करे और आप इसकी अगुवाई और मार्गदर्शन करें। हमारी आशीषें इसके संग हो जैसा कि हम इसे यीशु मसीह के नाम में भेजते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। ओ मैं नहीं जानता, हम टेलीफोन सेवा पर हैं, 50 सेंट प्रति मिनट। क्या वहाँ कोई और है जो यहाँ चाहता हो? ऊपर आएं, अपना नाम बताएं, आप कौन हैं? बस उन्हें बताएं, क्या यही हैं? मेरे भाइयों, क्या ये लोग, क्या आप लोग इस संदेश का परमेश्वर के वचन में से सत्य होने का विश्वास करते हैं? क्या आप इसका पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? ठीक है, और आप लोग इच्छा रखते हैं और सोचते हैं कि यदि हम आप लोगों पर हाथ रखें, हम आपको ये जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपकी सहायता के लिए हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं जो हमसे हो सकता है। और अब भाइयों, मैं चाहता हूँ ताकि मैं भी आप लोगों पर हाथ रखूं, तो कदम बढ़ाकर यहाँ तक आएं और हम सब अपने अपने सिरों को झुकाएं और हम सब अपने सिरों को झुकाएं जबकि हम इन पर हाथ रखते हैं। प्रिय परमेश्वर, ये पुरुषों का एक झुंड है और मैं अपने हाथ प्रत्येक पर रखता हूँ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में। और होने पाए आप जो इन्हें सेवक ठहराते हैं ताकि वे इसे प्रचार कर सकें प्रभु अपने जीवन के सारे दिनों में, और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करें। हम इन्हें संगति का दाहिना हाथ देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीषें इन पर हों प्रभु, जैसा कि हम उनको आशीषित करते हैं, अपनी आशीषें भेजते हैं। होने पाए ये पृथ्वी की हर दरार में जाए जिसके जाने के लिए आपने इन्हें बुलाया है। होने पाए ये अपनी क्षमता से कार्य और सेवा करें जिसके लिए आपने इन्हें बुलाया है। होने पाए ये बहादुर और मसीह के सच्चे दास हों, प्रभु से प्रदान करें और हम इसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। परमेश्वर प्रत्येक भाइयों को आशीषित करे। परमेश्वर आपको आशीष दे भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई हिमस, प्रभु आप में हरेक के साथ हो। वो बंधन जो बांधता है धन्य हो, हमारे हृदय मसीह में प्रेम में एक से विचारों की संगति उस ऊपर वाले के समान, क्या ये शानदार नहीं? अब जरा सोचे कितने सेवक गण आज रात्रि यहाँ हैं जिनके ऊपर हाथ रखे गए। मुझे मालूम नहीं था कि हम टेलीफोन की सेवा में थे, यदि वे बाहर के लोग मुझे इसके लिए क्षमा करें, मुझे ये मालूम नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि वे छोटे संदेश को आज रात्रि टेलीफोन संचार पर डालेंगे, परंतु हम वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और सीधे सीधे संदेश में जाएंगे, जो मैं अनुभव करता हूं कि पवित्र आत्मा आपके लिए आज रात्रि देगा। और जबकि हम ये निकाल रहे हैं अपने मूल पाठ के लिए, जिसकी घोषणा मैं कुछ क्षण में करूंगा, आइए गिनतियों को निकालें। 22वां अध्याय 31 पद, गिनती 22:31 मूल पाठ के लिए। जबकि आप निकाल रहे हैं, यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें या निशान लगा लें। मैं चाहता हूं आप सब मुझे याद रखें जब तक मैं आपको आपसे फिर ना मिलूं। मैं आशा करता हूं इन गर्मियों में किसी समय, यदि प्रभु चाहे, यदि कुछ घटित होता है, मैं विदेश नहीं जाता हूं, तो मैं वापस आऊंगा। परंतु अब हम विश्वास कर रहे हैं कि ये सब आसपास कैसे कार्य करता है, कि पवित्र आत्मा अब हमें भेजने जा रहा है उस मार्ग पर जो उसने स्वयं हमें भेजने को चुना है, और हम इसी प्रकार से करना चाहते हैं। धन्य है प्रभु। पिता, हम आपका वचन पढ़ने को हैं, क्या आप इसे आशीषित करेंगे और हमारी समझ के लिए अभिषेक देंगे? हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय और 31वां पद, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। अब इसके पढ़े जाने और इसके चारों ओर विषय बनाने में इस विषय को लेना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर कभी अपना विचार अपने वचन के विषय में बदलता है? ये एक अच्छा विषय है और एक महान सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। क्या परमेश्वर कुछ कहकर और फिर कहे, मुझे खेद है कि मैंने ये कहा? क्या परमेश्वर अपना वचन वापस ले सकता है अपने ये कहने के पश्चात? अब यहाँ इस कथन में कारण जो मैंने ये कथन चुना, क्योंकि ये कथन बाइबल का है, कि एक पढ़ने वाला देखने का यत्न करता है या कहने का यत्न करता है कि क्या परमेश्वर अपना विचार बदलता है। ये बाइबल में किसी भी स्थान से अधिक ये प्रतीत होता है कि उसने अपना विचार बदल दिया। मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने बालाम से एक बात कही और फिर उसे दूसरी बात कही। और अब बहुत से लोग बालाम को एक भविष्य बताने वाला या कुछ बनाना चाहते हैं, परंतु बालाम भविष्य बताने वाला नहीं था, वो प्रभु का भविष्य दक्ता था। अब हम एक प्रकार से पहले संदेश की रूपरेखा लेंगे। इसलिए अपनी यात्रा पर था और इसराइल और फिलिस्तीन जा रहे थे, बल्कि मिस्र से आ रहे थे। और प्रभु उसके साथ था और वह हर शत्रु जो इसराइल के सामने उठा, उनके सामने से हट गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो उनके आगे बर्रों को भेजेगा और शत्रुओं को भगा देंगे जब तक वे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। कार्य कभी भी बड़ा नहीं था। अमालेकी उस समय के बड़े लोग इसराइल के लिए कोई अर्थ नहीं रखते थे। यद्यपि वे कद काठी में छोटे थे, परंतु वे यहोवा यूं कहता है मैं चल रहे थे। इसलिए कोई अर्थ नहीं विरोध या क्या था। परमेश्वर ने सदा अपने प्रतिज्ञा के वचन को देखा और इसराइल कभी असफल नहीं हुआ। पुराने नियम का इसराइल नए नियम की दुल्हन की प्रतिछाया है, संसार से निकलकर बाहर आ रहे हैं, कनान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं कि हम सहस्र शताब्दी में जा रहे हैं। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि मोआब कलीसिया का प्रतीक है, और मोआब उन्होंने कुछ राजाओं को मारा था और शत्रुओं को हराया था, हर चीज मार डाली और राष्ट्र पर कब्जा किया और मोआब से हिल गए। अब मोआब किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजक राष्ट्र नहीं था। मोआब ने उसी परमेश्वर की सेवा की जिसकी इसराइल ने सेवा की, और मोआब राष्ट्र मूल रूप से लूत के पुत्र से आरंभ हुआ, उसकी अपनी पुत्री के द्वारा। और वो इस राष्ट्र का बनाने वाला हुआ और उसने अपने यश को संस्थागत किया और आदि आदि और इसमें से एक महान राष्ट्र बना और बढ़े और आगे बढ़ते रहे। और अब इसराइल अब्राहम का वंश था न कि लूत का। इसराइल इसहाक याकूब से आया और इसराइल याकूब के 12 गोत्रों से निकला जो कि बाद में इसराइल कहलाया क्योंकि उसने प्रभु के संग मल्ल युद्ध किया। और यहाँ मोआब और अब इसमें और आप लोग जो टेलीफोन प्रणाली पर हैं, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आलोचना वाला नहीं होना चाहता। मैं आशा करता हूँ कि मैं नहीं हूँ, परंतु वो संदेश जो मुझे दिया गया है मुझे उस संदेश के प्रति ईमानदार होना ही चाहिए या फिर मैं ढोंगी होऊंगा। देखिए, मैं उससे अधिक नहीं कह सकता जो मुझे कहने के लिए भेजा गया है। और मैं सोचता हूँ कि मसीही समाज का सबसे बड़ा शत्रु आज संस्थागत कलीसियाएं हैं। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ और अंत में ये पशु की छाप में बदल जाएगा जो कि मैं सोच सकता हूँ। मैं परमेश्वर की सहायता से बाइबल से सिद्ध कर सकता हूँ। मैं इसे पहले ही कर चुका हूँ कि ये पशु की छाप का रूप लेगा कलीसिया के संघ में, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी किसी समय में भी संस्थागत कलीसिया को मान्यता नहीं दी। कभी नहीं, उसने ये कभी नहीं किया। और हर बार मनुष्य ने संस्था बनाई तो परमेश्वर का आत्मा इसे छोड़कर चला गया और फिर कभी भी वापस नहीं आया। किसी भी इतिहासकार से पूछें या आप स्वयं पढ़ सकते हैं, कभी नहीं। जब वे संस्थागत हुए तो परमेश्वर ने उन्हें तखाल में रख दिया और यही ये आ गया और इसके आगे ये रुक गया। वे गिनती में बढ़ गए परंतु आत्मा में कभी नहीं जागे, कभी नहीं और नहीं। यह मोआब एक ऐसा ही प्रतीक है क्योंकि वे संस्थागत हो गए थे, एक संस्थागत राष्ट्र अपने ही राष्ट्र में जैसे अपने नामधारी में, और वहाँ उनका अपना ही धर्म था, वैसे ही धर्म जो इसराइल का था। वे मोआबी थे और उन्होंने यहोवा परमेश्वर का विश्वास किया, परंतु वे एक संस्थागत लोगों का झुंड थे। और अब जैसे वे स्वाभाविक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसराइल यात्रा में आत्मिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसराइल संस्थागत राष्ट्र नहीं था। जब तक वे परमेश्वर का अनुकरण करते रहे वे स्वतंत्र थे। वे आए, परदेशी हुए, जाने के लिए कोई स्थान नहीं, अग्निस्तंभ जहाँ गया वे उसके साथ गए। वे संस्थागत राष्ट्र नहीं थे, उनके मध्य में एक व्यवस्था थी क्योंकि खतने की व्यवस्था उन्हें दी गई परमेश्वर की उस आज्ञा के द्वारा, परंतु कभी भी संस्थागत राष्ट्र नहीं। इस समय जब अंत में वे संस्थागत राष्ट्र हो गए वहीं उनकी गिरावट हुई और अपने मसीहा को अस्वीकार किया। और अब हम सदा ये पाते हैं कि जब ये स्वाभाविक और आत्मिक कलीसिया की आत्माएं और संस्थाएं मिलती हैं तो वहाँ सदा टकराव होता है। ये ऐसा ना हो, ये कभी नहीं हुआ, सदा टकराव हुआ, क्योंकि हम ये पाते हैं कि वहाँ द्वेष होता है और द्वेष में ये शारीरिक तुलना और नकल का कारण होता है। और आज हम ये पाते हैं जैसा ये तब था, जब परमेश्वर किसी के साथ व्यक्तिगत कुछ करता है तो हर एक उसकी नकल करने का यत्न करता है जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के साथ किया। देखिए, ये प्रतियोगिता का कारण है और इसे शारीरिक बनाता है। और तब यदि वे उस ओर आत्मिक परिणाम नहीं पा सकते तब वे इसे राजनीतिक ताकत के द्वारा लेते हैं या वे कोई विकल्प कुछ कि लोगों के मस्तिष्क को विचलित करते हैं और अपने पीछे चेलों को खींचते हैं। हर एक के आरंभ में ऐसा ही घटित होता है, जैसे कीन और हाबिल दोनों लड़के यहाँ पृथ्वी पर थे। और जब हाबिल ने परमेश्वर को कीन से अधिक अच्छा बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने हाबिल को प्रमाणित किया, नीचे आकर उसके बलिदान को स्वीकारा, ये कीन के लिए द्वेष का कारण हुआ क्योंकि वह अपने भाई से द्वेष करता था और अपने भाई को घात किया। ये शुरू में आरंभ हुआ कि जब स्वाभाविक और आत्मिक, यद्यपि केन और हाबिल ने एक ही परमेश्वर की आराधना करी, उन दोनों ने एक ही प्रकार की वेदियां बनाई और दोनों ने एक ही परमेश्वर की आराधना की, एक ही कलीसिया, एक ही वेदी। परंतु केन शारीरिक कारण भूमि के फल लेकर आया और वेदी पर बलिदान के समान रख दिया, सोचते हुए कि ये छुटकारे के लिए परमेश्वर को उत्तर देगा। इसलिए उसे ऐसा ही लाना चाहिए जैसा आज लोग सोचते हैं, सेब जो आदम और हवा ने खाया और पाप का कारण हुआ, और जो भी है अब मैं सोचता हूँ वे अब अनार पर आ गए हैं। अधिक समय नहीं हुआ, उनमें से कुछ ने कहा ये कुछ और था, और परंतु हाबिल का बलिदान ठीक था। वो जान गया था कि ये लहू था जिससे ये हुआ, इसलिए वो मेमना लाया, और जब परमेश्वर ने उसका स्वीकारा, अब हाबिल ने विश्वास से प्रकाशन के द्वारा, कोई और मार्ग नहीं, कोई लिखी हुई बाइबल नहीं थी। इसलिए आप देखिए, धार्मिकता का आरंभ परमेश्वर का प्रकट हुआ सत्य है और सारी परमेश्वर की जीवित कलीसिया इसी पर बनी है। यीशु एक दिन पहाड़ से उतर रहा था, अपने चेलों से कहा, मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं? एक ने कहा तू मूसा है, दूसरे ने कहा तू एलिया है, और तू यर्मिया या कोई भविष्यवक्ताओं में से एक। उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं हूँ? यही जब प्रेरित पत्रस परमेश्वर से प्रेरित आत्मा के द्वारा जिलाए हुआ जोरदार बयान दिया, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। बयान पर ध्यान दें, धन्य है तू शमौन योना के पुत्र, मांस और लहू ने तुझ पर ये प्रकट नहीं किया, मेरे स्वर्गीय पिता ने ये तुझ पर प्रकट किया है। तू शमौन है इस पत्थर पर, क्या पत्थर? अब कैथोलिक कहते हैं पत्रस पर, पत्थर, छोटा पत्थर, और प्रोटेस्टेंट कहते हैं मसीह पर, पत्थर। अलग होने को नहीं, परंतु ये प्रकाशन पर था जो पत्रस के पास था कि वो कौन था। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता, यीशु ने कहा, सिवाय कि मेरा पिता उसे खींच ना ले, और सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, धन्य है तू शमौन योना के पुत्र, मांस और लहू ने ये प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। परमेश्वर का प्रकट किया हुआ आत्मिक वचन, ध्यान दें, हाबिल ने परमेश्वर पर विश्वास से और अच्छा बलिदान चढ़ाया, और शारीरिक विश्वासी ने सोचा कि ये तो उसके अपने हाथों का कार्य था कि उसके फल और उसकी सुंदरता, सुंदर भेंट जो वो लाया, उसे परमेश्वर मान्यता देगा, और ये टकराव हुआ। हम पाते हैं अब्राहम और लूत को टकराना था। हम पाते हैं कि मूसा और दातान और कोहरा में यही टकराव था। मूसा के वचन से अभिषिक्त भविष्यवक्ता ये प्रमाणित हुआ कि उस समय के लिए वो उनके लिए चुना हुआ अगुआ था, और ये कि अब्राहम से इन सारी बातों की प्रतिज्ञा की गई थी, और यहाँ मूसा ने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने कहा कि ये होगा, वही हुआ। और कोरा शारीरिक होने के नाते उनके मध्य में एक संस्था खड़ी करना चाहता था, वो कुछ लोगों का झुंड बनाना चाहता था, और परमेश्वर इस प्रकार के लोगों से व्यवहार नहीं करता। ये इस वचन में सीधा सीधा दिख पड़ता है, आज की यात्रा की एक प्रतिछाया, जिसे परमेश्वर अभिषिक्त करे वो संस्था नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोरा ने ये किया, उसने मूसा से कहा, तुम अपने ऊपर बहुत कुछ लेते हो। दूसरे शब्दों में सारी मंडली पवित्र है, तुम कहते हो कि केवल तुम ही पवित्र हो, तुम्हारा ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो, हम पवित्र हैं, हम सब परमेश्वर के बालक हैं। और बस मूसा ने अपना मुंह फेरा और चला गया। उसने कहा, प्रभु मैं क्या करूंगा? परमेश्वर ने कहा, अपने आप को अलग कर, अब ये अति हो गई है मेरे संग, और वो उसे भूमि में निगल गया। देखिए, वहाँ एक टकराव था, जब शारीरिक और आत्मिक मिलते हैं वहाँ सदा टकराव होता है। जब यहूदा और यीशु मिले वहाँ टकराव था, परमेश्वर का पुत्र दूसरा वाला शैतान का पुत्र। जैसे केन और हाबिल जब वे मिले तो उनमें टकराव हुआ, उनमें से एक कलीसिया का खजांची और दूसरा एक पास्टर। और अब हम इस दिन में आते हैं फिर उसी चीज पर, शारीरिक नामधारी मसीह की आत्मिक दुल्हन से। मसीह की आत्मिक दुल्हन उस शारीरिक संस्थाओं से इतनी भिन्न थी, यहाँ तक कि उनमें कोई तुलना नहीं। अब ध्यान दें, शारीरिक सदा आत्मिक का प्रतिरूप बनने का यत्न करता है, परंतु जैसा याकूब और ऐसा में ये कार्य नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा। अब जब ये अच्छे कार्य करने की बात आती है, मैं विश्वास करता हूँ वास्तव में ऐसाव याकूब से अधिक भला व्यक्ति है मनुष्य की दृष्टि में। उसने अपने पिता की देखभाल की, चिंता की, वो अंधा था, वो एक भविष्य रखता था, और ये सारी चीजें जो उसने करने का यत्न किया, परंतु फिर भी ऐसाव ने शारीरिक कार्य करने के विषय में नहीं सोचा। उसने सोचा वो अपने किए के द्वारा भीतर जा सकता है, किसी के लिए कुछ अच्छा करो जो कि ठीक है। परंतु याकूब वो अपने पूरे प्राण से उस जन्म सिद्ध अधिकार को पाले, और यही परमेश्वर ने उसमें आत्मिक मान्यता देखी। ध्यान दें, और सदा ही यही कारण रहा कि शारीरिक आत्मिक से घृणा करे। यही कारण था कि केन ने हाबिल से घृणा की, कोरा ने मूसा से घृणा की, यही कारण कि यहूदा का यीशु से घृणा का कारण, और ये और आगे चलता है। यही कारण है कि शारीरिक आत्मिक से घृणा करता है, ठीक जैसे आरंभ में केन ने हाबिल से घृणा की, एक वो जिसका बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसे घात करने का यत्न किया, यहाँ तक कि उसके प्रभाव को नष्ट करने का यत्न किया। उन्होंने हर चीज नष्ट करने का यत्न किया, क्योंकि ये और कुछ नहीं केवल द्वेष था। ये केन में आरंभ हुआ और सिद्ध हुआ कि ये द्वेष था, और आज अब भी यही बात है। जब स्वाभाविक शारीरिक और आत्मिक एक दूसरे से मिलते हैं, ये सिद्ध करता है कि ये शैतान है, कोई और मार्ग नहीं, क्योंकि द्वेष शैतान की ओर से आता है, और फिर सच्चाई की नकल का कारण बनता है। कोई किसी की नकल का यत्न करता है जो कि नहीं है, वैसे करने के लिए अभिषिक्त नहीं है। इन अंत के दिनों में ये कितना दिखाई पड़ता है, ओह ये कितना है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने मूल वचन के प्रति सदा अपना विचार नहीं बदलता, परंतु जिसको वो बुलाता है उसी का वो अभिषिक्त करता है। कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता, कोई भी मूसा का स्थान नहीं ले सकता, कोई मतलब नहीं, कितने भी कोरा खड़े हो जाएं और कितने भी दातान। ये मूसा था जिसे परमेश्वर ने बुलाया अनपेक्ष, परंतु और यदि लोग उसकी सिद्ध इच्छा पर ना चले तो उसकी अनुमति बोधक इच्छा है, वो उसमें आपको चलने देगा। ध्यान दें, वो इसकी अनुमति देता है, ठीक है, परंतु वो इसे अपनी महिमा के लिए करेगा, अपनी सिद्ध इच्छा में। यदि आप चाहें, जैसा कि आरंभ में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी कि बालक इस पृथ्वी पर काम प्रवृत्ति के द्वारा जन्मे, नहीं श्रीमान, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से रचा, उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी हो गया, और उसने उस मनुष्य में से एक सहायक बनाया और उसके लिए पत्नी बनाई। ये परमेश्वर की पहली और मूल इच्छा थी, परंतु जब पाप भीतर आया और वो किया जो किया, तब परमेश्वर ने अनुमति दी कि पत्नी से विवाह करे वैधानिक, और उसके द्वारा बालक जन्माए, फूले फले और बढ़े, यदि आप इस प्रकार से करने जा रहे हैं। परंतु आप देखिए, ये कभी भी उसकी सिद्ध इच्छा नहीं थी। इसलिए सारी वो चीजें जिनका आरंभ है उसका अंत है, सारा पाप नष्ट होना ही है, सारा पाप समाप्त होना ही है। इसलिए महान सहस्र शताब्दी में जब पुनरुत्थान आता है, हमें फिर से जन्म ना लेना होगा अपने पिताओं के द्वारा और माताओं के, परंतु जैसा परमेश्वर ने आरंभ में किया, मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी में से बुलाया और उसकी सहायता उसके साथ, ये ठीक बात है। इसलिए परमेश्वर ने अपना विचार किसी चीज के लिए नहीं बदला, परंतु वो आपको अनुमति देता है कि आप बढ़ते जाएं। अब ये बहुत लंबा है कि ये बताऊं कि मैं इस विषय में क्या कहना चाह रहा हूँ, परंतु ये आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ जाएं, समझे। परमेश्वर आपको अनुमति देगा कि आप कुछ करें, और यहाँ तक कि उसमें आपको आशीषित भी करेगा, परंतु अब भी ये उसकी सिद्ध इच्छा नहीं है। निर्गमन 19वें अध्याय में परमेश्वर ने इसराइल को व्यवस्था लेने की अनुमति दी, जबकि अनुग्रह ने उन्हें पहले ही एक नबी दिया था, अग्निस्तंभ, एक बलि किया हुआ मेमना, एक छुटकारे की सामर्थ, परंतु वे एक व्यवस्था के लिए चिल्लाए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परंतु क्योंकि मनुष्य ये चाहता था इसलिए यह डाली गई, और जिस व्यवस्था को वे चाहते थे उसी के द्वारा वो श्रापित ठहरे। परमेश्वर की इच्छा, ये सबसे अच्छा है। यही जो उसने हमें सिखाया, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हमें स्वयं को उसकी इच्छा के लिए समर्पित होना चाहिए और उसके वचन। इस पर प्रश्न ना करें, इसका विश्वास करें। कोई और मार्ग ढूंढने का यत्न ना करें, वैसा ही लें जैसा ये है। कुछ लोग इधर उधर घूमते हैं कि कोई और मार्ग मिले, और जब आप करते हैं तो आप पाते हैं कि आप बढ़ रहे हैं, आप पाते हैं परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है, परंतु आप उसकी अनुमति बोधक इच्छा में कार्य कर रहे हैं, ना कि सिद्ध इच्छा में, दिव्य इच्छा में। जैसे मैंने कहा, वो इसकी अनुमति देता है, परंतु वो नहीं करेगा, परंतु वो इसे अपनी सिद्ध इच्छा नहीं बनाएगा, परंतु सम्मान के लिए इसे कार्य करने देगा और सिद्ध इच्छा को आशीषित करेगा। काम इच्छा के द्वारा संतान उत्पत्ति करना इसमें से एक है। अब ध्यान दें, मुआब आरंभ से ही एक अवैध राष्ट्र था। यह अवैध रूप में आरंभ हुआ, फिर भी एक पिता के द्वारा विश्वासी और एक पुत्री विश्वासी। ठीक वैसे ही यदि आप इसका प्रतीक लेंगे और आत्मिक विचार, आप इसे देख सकते हैं कि नामधारी वहाँ खड़ा है, बिल्कुल स्पष्ट जितना कि कुछ भी हो। निश्चय ही देखिए, सारी चीज कुल मिलाकर गलत है। और देखिए, जब ये लाया गया, इस प्रकार आरंभ हुआ, ये कभी नहीं सकता, ये बनाए रखता है जैसे कि बर्फ की गेंद, ये अधिक और अधिक लुढ़कती रहती है। आप एक गलती को लेते हैं और उस पर आरंभ होते हैं, और आप एक से दूसरी चीज पर बढ़ते जाते हैं, एक चीज दूसरी के समान, एक के बाद सब, और इसी प्रकार से कलीसिया आरंभ हुई। इसी प्रकार से ये निसिया रोम में आरंभ हुई, जब रोमन कैथोलिक कलीसिया बिल्कुल आरंभ में जहाँ से ये आई वो पेंटिकॉस्टल था। परंतु जब वे संस्थागत हुए और कलीसिया के मानक बनाने में आए, उन्होंने प्रार्थनाएं बनानी आरंभ कर दी, और माला जपना, और मरियों के लिए प्रार्थना, और वे सारी दूसरी चीजें, और फिर ये बढ़ना आरंभ हो गया, एक गलती से दूसरी गलती, एक गलती से दूसरी। देखिए, जब तक कि वे यहाँ तक नहीं चले गए, इसमें पेंटिकॉस्टल का कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। समझे, ये एक गलती दूसरी को लेती है, दूसरी को लेती है। करने के लिए केवल एक ही चीज है कि अभिलेख को साफ कर दिया जाए और फिर से आरंभ में जाएं। जब मार्टिन लूथर न्यायोचितता के साथ आरंभ हुआ, इसे आगे बढ़ना चाहिए था लूथर कलीसिया को। समझे, यदि जब लूथर संस्थागत हुए, वे वैसली का पवित्रकरण ना ले सके क्योंकि वे संस्थागत थे, और मनुष्य इसका पक्ष नहीं लेंगे, इसलिए आत्मा इससे बाहर निकल गया। अब लूथ का झुंड यहाँ पर है, या मुआब लूथ की पुत्री का बालक था, आरंभ से ही अवैध। अब ध्यान दें, जैसे शारीरिक मुआब शारीरिक नामधारी का प्रतिनिधित्व करता है, इसराइल आत्मिक कलीसिया को दर्शाता है। इसराइल वहाँ एक सच्ची कलीसिया थी, उस दिन की दुल्हन थी, मिस्र से बाहर बुलाई गई और सच्ची प्रमाणित की गई। ध्यान दें, जब वे दोनों पास पास आते हैं, दोनों ने एक ही बलिदान चढ़ाया, दोनों ने बनाया, सात वेदियां देखी, दोनों ने शुद्ध बलिदान चढ़ाया, बैल, यहाँ तक कि दोनों ने मेड़े चढ़ाए, गवाही दी कि मसीह आने वाला था। मूल रूप में वे दोनों ठीक एक से थे। इसराइल नीचे घाटी में थे, मुआब ऊपर पहाड़ पर, और मुआब सात वेदियों के साथ, इसराइल सात वेदियों के साथ, मुआब सात बैलों के साथ, इसराइल सात बैलों के साथ, मुआब सात मेड़ों के संग मसीह के आगमन को दिखा रहा है, इसराइल सात मेड़ों के साथ। उनमें क्या भिन्नता थी? मूल रूप में दोनों सही थे, परंतु आप देखते हैं मुआब के पास इस बात का प्रमाण नहीं था कि परमेश्वर उनके संग है। वे केवल एक राष्ट्र है, एक विख्यात झुंड, परंतु इसराइल के साथ उनका भविष्य तकता था। उनके पास मारी हुई चट्टान उनके साथ थी, उनके पास अग्निस्तंभ था, चंगाई के लिए उनके पास पीतल का सांप था, परमेश्वर की आशीषें उनके साथ साथ चल रही थी, और वे परमेश्वर के बुलाए हुए लोग थे। अब हम उनमें आज की कलीसियाओं का सिद्ध प्रतिरूप उनमें देखते हैं, जैसा कि मोआब ऐसा नहीं था, इसराइल परदेशी था, एक जगह से दूसरी जगह जहां कहीं भी वो अग्नि स्तंभ जाता था वे उसके संग गए। मोआब ऐसा नहीं था, वे अपने नामधारी में बस गए थे, अपने ही राष्ट्र में वे नहीं हिले, वे ठीक वहीं रहे। उनके अपने प्रसिद्ध लोग थे और उन्होंने बहुत सी चीजों को अभिषिक्त किया जैसे उन्हें करना चाहिए था, और उनके अपने योद्धा, उनके अपने लड़ाकू, उनके अपने राजा जिनसे वे अपनी आज्ञाएं पाते और आदि आदि। परंतु मोआब ने देखा कि इसराइल के पास कुछ है जो उनके पास नहीं है। उन्होंने इसराइल के बीच जोरदार सामर्थ्य देखी और वो एक भविष्यद्वक्ता था, और वो भविष्यद्वक्ता मूसा था, और वे जान गए कि जब युद्ध में गड़बड़ी हुई उन्होंने बस उसके हाथ उठाए और उन्हें ऊपर थामे रखा और युद्ध बदल गया। इसलिए उनके पास ऐसा नहीं था जैसे कि ये, इसलिए उन्होंने इसकी तुलना राजनीति से करी, राजनीतिक खींचतान से। उन्होंने दूसरे देश में लोग भेजे और एक भविष्यद्वक्ता किराए पर लिया ताकि उनके पास भी भविष्यद्वक्ता हो और उनके मध्य में भी सामर्थ हो जैसे कि इसराइल के मध्य में थी। क्या आप शारीरिक तुलना देख सकते हैं? क्या आप आज संसारी कलीसिया देख सकते हैं? इसने वही चीजें की हैं। अब ध्यान दें, उन दोनों के पास भविष्यद्वक्ता होने जा रहे हैं। केवल एक ही भिन्नता थी, मूसा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, उसका राजा परमेश्वर था। ये वहीं से आज्ञाएं पाता था, प्रभु का वचन, और बालाम वो भी उसका एक राजा था, और वो राजा बालाक था, मोआब का राजा, और उसी से वो अपनी आज्ञाएं और अपनी आशीषें पाता था। इसलिए मोआब ने बालाक से कहा, यहाँ आ, या बालाम ने कहा, यहाँ आ और मेरे लिए इन लोगों को श्राप दे, क्योंकि ये सारी पृथ्वी पर छा गए हैं। वे आए और बैल के समान सब कुछ चाट गए, जैसे वो घास चाट जाता है। कहा, अब जरा आ और मैं समझता हूँ कि तू श्राप दे सकता है, तू आशीष दे सकता है, तू जो भी करता है वो मान्य है। अब हम इस पर यहाँ ध्यान देना चाहते हैं कि ये मनुष्य भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ, परंतु उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार राजनीति के कारण बेच दिया, जैसे कि आज कलीसिया ने किया, जैसे लूथर, वेसली, पेंटिकॉस्टल और उनका सारा झुंड अपनी संस्था में खींचने के कारण बेच दिया। मूसा परमेश्वर की अधीनता में, बालाम बालाक की अधीनता में, तब भी दोनों भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के बुलाए हुए मनुष्य और दोनों आत्मिक। भिन्नता पे ध्यान दें, दोनों के पास अध्यक्ष थे, मूसा का परमेश्वर था, बलाम का बालाक था। ध्यान दें कैसे आत्मिक को लागू किया, ये सिद्ध करने के लिए शारीरिक गलत है। मूसा परमेश्वर का भेजा हुआ, अपने कर्तव्य पर उसका सामना और चुनौती परमेश्वर के दूसरे भविष्यद्वक्ता के द्वारा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मूसा परमेश्वर का बुलाया हुआ, परमेश्वर से अभिषिक्त, परमेश्वर के कर्तव्य पालन पर खड़ा हुआ है, इन ठंडे औपचारिक झुंड में आ गए और परमेश्वर के दूसरे नबी के द्वारा चुनौती, जिसे परमेश्वर ने आशीषित और अभिषिक्त किया। आप कैसे अंतर बताएंगे? उन दोनों के पास भविष्यद्वक्ता थे, परमेश्वर ने दोनों भविष्यद्वक्ताओं से बात की और उनमें से कुछ कहते हैं, परमेश्वर ने कहा ये करो, परमेश्वर ने कहा वो करो। अब मैं इस पर प्रश्न नहीं करता, परंतु ये परमेश्वर के वचन की रीति से बाहर है। भविष्यद्वक्ता कोई मतलब नहीं, यदि वो भविष्यद्वक्ता है वो पंक्ति से बाहर है। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने धोखा खाया, ओ ये भाई ये कर सकता है, ये भाई ये कर सकता है, और वचन का इनकार करता है। यदि मैं मनुष्य और सदूतों की बोली बोलूं, यदि मेरे पास वरदान हो कि मैं पहाड़ों को हिला सकता हूं, यदि मैं अपना सारा माल कंगालों को खिला दूं, तो भी मैं कुछ नहीं। उस दिन बहुत तेरे सारे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने आपके नाम से सामर्थ्य कार्य और प्रेत आत्माओं को बाहर नहीं निकाला? मैं उनसे कह दूंगा, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के कार्य करने वालों, मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। यद्यपि वे इस बात के मान लेने के साथ आए कि उन्होंने ये किया, परंतु यीशु ने कहा वे अधर्म के कार्य करने वाले। अधर्म क्या है? कुछ ऐसा जो आप जानते हैं आपको करना चाहिए, ये करना ठीक है, और फिर भी आप नहीं करते। देखिए अंत के दिनों में क्या होने जा रहा है, पूरी पंक्ति को सुनिए। आज रात्रि मेरे यही उद्देश्य था, मैंने कहा मैं 9 बजे बाहर हो जाऊंगा, परंतु संभव है मैं थोड़ी और देर रुकने वाला हूँ। देखिए ये मेरा उद्देश्य था कि आपको ये पंक्ति दिखाऊं परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये देखें, परमेश्वर को परमेश्वर बना रहने के लिए अपने वचन को पूरा करना है। अब हम ध्यान देते हैं कि ये दोनों आत्मिक मनुष्य हैं, दोनों ही भविष्यद्वक्ता, दोनों बुलाए गए, और मूसा ठीक अपने कर्तव्य पर ताजगी के साथ अग्नि स्तंभ हर दिन उसके सामने, परमेश्वर का आत्मा उस पर, उस कर्तव्य पर।
Here comes another servant of God, called of God,
यहाँ पर परमेश्वर का दूसरा दास आता है, परमेश्वर का बुलाया हुआ, परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त एक नबी जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है। यहाँ एक खतरे की रेखा है। ये कोई विवाद नहीं कर सकता कि ये मनुष्य परमेश्वर का जन नहीं, परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल ने कहा परमेश्वर का आत्मा उससे बोला और वो एक नबी था। परंतु आप देखें, जब उसे परमेश्वर से वास्तविक उत्तर मिला, वो इसका पालन नहीं करेगा, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, तब वो मूसा को चुनौती देने चला गया। अब बालाम ने अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की इच्छा जानी। अब जब ये महान पुरुष आए और कहा, बालाम, बलाक राजा ने भेजा है कि तुम तुरंत आओ और इन इसराइली लोगों को श्राप दो, क्योंकि वे सारी पृथ्वी पर फैल गए हैं और अब उन्होंने मेरे विरुद्ध डेरे लगाए हैं और इन्होंने आसपास के सारे राज्य चट कर दिए अपने नीचे, और अब हम चाहते हैं कि तुम आओ और इन लोगों को श्राप दो, क्योंकि मैं समझता हूँ यदि तू किसी को श्राप दे तो वो श्रापित है। अब आप देखिए, वो परमेश्वर का जन है, जिसे तू आशीषित करे वो आशीषित हुआ, वो एक परमेश्वर का दास था। अब बालाम के विचार भविष्यद्वक्ता होने के नाते, अब यहाँ मेरे करने के लिए केवल एक ही चीज है, और ये कि परमेश्वर की इच्छा मालूम करूँ। यदि वो भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया गया है तो ये भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य है। पहले भविष्यद्वक्ता को क्या करना चाहिए? कि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करे, परमेश्वर का वचन, उसे ये करना ही चाहिए, क्योंकि भविष्यद्वक्ता होने के नाते परमेश्वर का वचन उसके पास आता है। वे कहते हैं, भाई आप धर्म विज्ञानी नहीं है। बाइबल ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वचन धर्म विज्ञानी के पास आता है, यही है जो इसमें गड़बड़ करते हैं। वचन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास आता है, और यहाँ एक मनुष्य था जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, और जब उसे किराए पर लिया गया, इसलिए किराए पर कि आकर परमेश्वर के और लोगों को श्राप दे, ध्यान दें, वो परमेश्वर की इच्छा को जानने गया और वो उसकी सिद्ध इच्छा जानना चाहता था, और परमेश्वर ने इस मामले में अपनी सिद्ध इच्छा बताई, उसकी सिद्ध इच्छा उसे बताई गई। उसकी इच्छा क्या थी? तू मत जा, ये परमेश्वर का पहला वचन था। तू उनके साथ ना जा, तू मेरे लोगों पर आक्रमण न कर, मेरे सिद्ध मार्गों पर चल रहे हैं। आज ये कैसे है, झगड़ा, विवाद और सब कुछ करना चाहते हैं, जबकि वे देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके मध्य में कार्य कर रहा है, और वे यत्न कर रहे हैं। उन्होंने वर्षों से यत्न किया कि इसे दबा दें, परंतु जितना वे इसे दबाना चाहते हैं ये उतना ही बढ़ता है। जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया, आप श्रापित नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप इसे नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिए, ये परमेश्वर के लोग हैं। अब वो भविष्यद्वक्ता, यद्यपि वो वहाँ था और राजा के द्वारा किराए पर लिया गया था और मान्यवरों और आदि आदि के बीच कार्य किया, और परमेश्वर का वचन उसके पास आया, उसने परमेश्वर की इच्छा को खोजा, और परमेश्वर की इच्छा ने उसे उत्तर दिया और कहा, इन लोगों को श्राप न दे, मैंने इन्हें आशीषित किया है। अब इस आकाश के नीचे कोई भी धर्म विज्ञानी नहीं जो इस संदेश को, जिसको हम प्रचार कर रहे हैं, इनकार कर सके, परंतु ये परमेश्वर का ठीक वचन अपने ठीक समय पर है। परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया है, हर चीज में जो कहा और किया गया उसने इसे सिद्ध किया है। अब कोई धर्म विज्ञानी, कोई बाइबल पढ़ने वाला नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं इस वचन में देख सकता है। यदि वो भविष्यद्वक्ता है, वो वही चीज देखेगा। परंतु यदि वो वही नहीं देखता जो दिखता है तो कुछ गलत है, क्योंकि आप कहते हैं मैं इसका उल्टा ले सकता हूँ, ऐसे ही बालाक और बलाम सके। देखिए, परंतु परमेश्वर ने मूसा को प्रमाणित किया, तो फिर प्रमाण क्या था? परमेश्वर का वचन। और उसने साधारण और स्पष्ट निर्णय परमेश्वर का सुना, तू मत जा, उसे श्रापित करने का यत्न न कर, जिसको मैंने आशीषित किया वे मेरे लोग हैं। परंतु आप जानते हैं क्या, बालाम ने उन लोगों को आरंभ से ही पसंद नहीं किया। ओ क्या ही आज संसार में कितने ही बालाम हैं, उसने आरंभ से ही उस झुंड को पसंद नहीं किया, उसने इस झुंड को आरंभ से ही पसंद नहीं किया। अब परमेश्वर का स्पष्ट निर्णय पा लेने के पश्चात कि तू मत जा, परंतु आप देखिए बजाय ये करने के, ये बिल्कुल वही बात है जैसे केन, जैसे कोहरा, वो डाह करता था और वो चाहता था कि जो भी हो, जाने का कारण या बहाना हो। ध्यान दें, उसके नामधारी का मुख्यालय से जब उसे बुलावा भेजा गया, कहा मत विश्वास करो कि मैं जाऊंगा, मत विश्वास करो कि मेरा उनसे कुछ लेना देना होगा, मैं उन लोगों से विवाद नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बता दिया है कि वे उसके लोग हैं, मैं ये विश्वास नहीं करता कि मैं जाऊंगा। यदि वो इसी के साथ बना रहता, परंतु हृदय के भीतर उसने उन्हें पसंद नहीं किया, समझे, वे उसके झुंड के नहीं थे, और कुछ भी जो उसके झुंड से नहीं वो आरंभ से ही ठीक नहीं था, समझे। और उसने उन्हें देखा, कहा इन लोगों ने कुछ भयंकर किया है, निश्चय ही पवित्र परमेश्वर ऐसे लोगों को श्रापित करेगा। ये लोग, ये अनपढ़ लोग और ये हमारे समान पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम होशियार लोग हैं। ओ ये परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते हैं, परंतु जरा उन्हें देखो, ये क्या है? एक झुंड गुलामों का एक झुंड, गारा बनाने वाले जिन्हें मिस्रियों ने निकाल भगाया। क्यों? परमेश्वर ऐसे गंदे लोगों से के ऐसे झुंड से कभी व्यवहार नहीं कर सकता। वो उस मारी हुई चट्टान को देखने में असफल रहा, उस पीतल के सांप को, उस अग्नि स्तंभ को, उसने उन्हें शिष्टाचार के दृष्टिकोण से जांचा। वो परमेश्वर की उस उच्च बुलाहट को देखने में असफल रहा, अनुग्रह से चुन लिए जाने के द्वारा वे उस पंक्ति में थे और परमेश्वर के वचन के साथ, और जब उसने उन्हें श्रापित करना चाहा, परमेश्वर ने कहा तू ऐसा मत कर, ये मेरे हैं, इन्हें छोड़ दे, इन्हें मत छू। अब इसलिए वो पुरुष मुड़ा और वापस चला गया। अब उसके नामधारी मुख्यालय पर ध्यान दें, यद्यपि जब वो वापस गया उन्होंने और प्रभावशाली झुंड भेजे, इस बार उनके कुछ विशिष्ट लोग थे बजाय साधारण लोगों के, बजाय साधारण लोगों के दिव्यता में डॉक्टर किए हुए हो सकते हैं, इस बार आए वे बिशप हो सकते हैं, या संभव है राज्य के प्रेस्बिटर, क्योंकि वे सारे, उसने अच्छा झुंड भेजा, थोड़ा अधिक प्रभावशाली झुंड, कुछ ऐसे जिनकी शिक्षा अधिक अच्छी थी और उसे योजना भली प्रकार से समझा सकते थे, इसे यथा उचित बना सकते थे। देखिए यही जो केन ने किया, उसने तर्क दिया, यही कोरा ने किया, उसने तर्क दिया, ये वो नहीं जिसने तर्क दिया, हम तर्कों को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कोई मतलब नहीं कोई क्या कहता है, हम परमेश्वर का विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर कहता है हम उस पर तर्क नहीं करते, आप उस पर तर्क नहीं कर सकते, आपको इसे विश्वास से स्वीकार करना है, और कोई भी चीज जो आप जानते हैं आपको उस पर तर्क नहीं करना है, नहीं जानते कि ये कैसे करता है, मैं बस विश्वास करता हूँ कि वो ये करता है, मैं नहीं जानता वो कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा है, परंतु उसने कहा वो इसे करेगा, मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैं इसे इस आधार पर स्वीकार करता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है। आप कहते हैं भाई आप इससे नहीं पा सकते, मैं नहीं जानता कि मैं इसे कैसे पाऊंगा, परंतु उसने कहा है इसे कहो। मुझे याद है मेरे बैप्टिस्ट पादरी ने मुझसे कहा, क्यों बिली तुम कलीसिया में खम्भों को प्रचार करोगे, तुम क्यों सोचते हो कि कोई इस प्रकार की बातें सुनेगा। मैंने कहा परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है, तुम सातवीं कक्षा की शिक्षा के साथ कैसे ये करने जा रहे हो, राजाओं के लिए प्रार्थना करना, सारे जगत में प्रचार करना। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि मैं ये कैसे करने जा रहा हूँ, परंतु उसने ऐसा कहा है और मेरे लिए यही बहुत है, समझे, उसने ऐसा कहा, मैं नहीं जानता ये कैसे होने जा रहा है। उसने कहा क्या तुम सोचते हो कि लोग इस महान शिक्षक संसार में जिसके विरोध में तुम खड़े होने जा रहे हो, इस दिव्य चंगाई के विषय में और आदि आदि, तुम क्या सोचते हो कि वे इसका विश्वास करेंगे। मैंने कहा मुझे ये नहीं जानना है कि वो इसका विश्वास करेंगे या नहीं, मैंने कहा मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे प्रचार करूं। उसने मुझे यही कहा है, उसने कहा वो मेरे साथ होगा और उसने मुझे बताया है कि वो ये क्या करेगा, और ये ठीक वैसे ही हुआ जो उसने कहा कि वो ये करेगा। पहले उनके हाथ पकड़ो, ये ऐसा होगा कि तुम उनके गुप्त विचारों को भी जान जा पाओगे। और मैंने इस विषय में आपको बताया और यह घटित हुआ उसी प्रकार से। इसने ये कैसे किया मैं अब भी नहीं जानता कि ये कैसे करता है। ये मेरा कार्य नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये बस हो गया। कौन व्याख्या कर सकता है जब परमेश्वर ने एलिया को बताया वहाँ ऊपर जाकर पहाड़ पर बैठ जा और मैं तुझे खिलाऊंगा, मैंने कौओं को ठहराया है कि तुझे खिलाएं। कौआ कैसे एक रोटी का टुकड़ा और मछली का टुकड़ा पका हुआ भविष्यद्वक्ता के पास लाता है? ये मैं जो व्याख्या कर सकता हूँ उससे बहुत आगे है। मैं नहीं सोचता कि आप भी या कोई भी ये कर सकता है, परंतु उसने ये किया। ये सब आवश्यक था, उसने ये किया और इसकी यही सच्चाई है। उसने ये कैसे किया मैं नहीं जानता, ये मेरा काम नहीं है, परंतु उसने ये किया। उसने पृथ्वी को कैसे बनाया मैं नहीं जानता, परंतु उसने ये किया। कैसे उसने अपने पुत्र को भेजा मैं नहीं जानता, परंतु उसने किया। वो कैसे मरुओं में से जी उठा मैं नहीं जानता, परंतु उसने किया। उसने मुझे कैसे बचाया मैं नहीं जानता, परंतु उसने ये किया। ये ठीक बात है। उसने आपको कैसे बचाया मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु उसने ये किया। उसने कैसे मुझे चंगा किया मैं नहीं जानता, परंतु उसने ये किया। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो ये करेगा और वो अपना वचन पूरा करता है। अब बालाम को ये जाना चाहिए था और वो इसे भली प्रकार जानता था। ध्यान दें, ये अच्छा प्रभावशाली झुंड आया और क्या अच्छा, उनके पास अच्छी भेंटें थीं और केवल इतना ही नहीं, वे उसे और पैसा दे सकते थे और वे उसे एक अच्छा पद दे सकते थे। अब एक संस्था में एक साधारण सेवक, हम तुम्हें जिले का संचालक बनाएंगे, समझे? ये कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, यदि तुम बस उन लोगों को, उस झुंड को भगा दो और उसे रोक दो। वो उन्होंने उसके सम्मुख बड़े पद का प्रस्ताव दिया, कहा जितना अधिक तुम आशीष, कहा तुम जानते हो मैं तुम्हारी पदोन्नति कर सकता हूँ। देखिए वो अपने वचन कहाँ से पा रहा है, राष्ट्र के अध्यक्ष से। मूसा अपने वचन कहाँ से पा रहा है, स्वर्ग के राजा से। एक के पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वचन, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा और तुम्हारे सामने कोई मनुष्य नहीं खड़ा हो पाएगा, और मैं तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेजूंगा और उन्हें सीधे और उल्टे और भगा दूंगा, और तुम देश को लेने जा रहे हो, मैंने तुम्हें ये पहले ही दे दिया है, बढ़ो और उसे ले लो, इस पर कब्जा कर लो, ये तुम्हारा है। और अब देखिए, यही जिससे मूसा सुन रहा था, और ये मनुष्य जब तक कुछ उसके हृदय में नहीं आता वो द्वेष में, और इसलिए वो पुरोहितों के अध्यक्ष के पास गया, समझे? ध्यान दें, अच्छा पद। उसने कहा तुम जानते हो कि मैं योग्य हूँ कि तुम्हारी पदोन्नति कर दूँ, मैं तुम्हारी पदोन्नति अच्छे स्थान पर कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए और करूंगा, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारा वेतन अच्छा कर दूंगा। और जब उसने इस सब का प्रस्ताव दिया वो अंधा हो गया। आज संसार में कितने सारे बालाम हैं जो कि अच्छे पद के द्वारा, एक अच्छी कलीसिया, किसी चीज की प्रतिज्ञा, जब मनुष्य की आंख वचन के लिए खुली और परमेश्वर के कार्यों के लिए, और वो भला मनुष्य जो प्रभावशाली था परमेश्वर के दास के समान आरंभ करेगा, और उसके पास एक अच्छी मंडली है, और कुछ समय पश्चात उसके सम्मुख पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रस्ताव आता है, यीशु के नाम में उसके बपतिस्मे का प्रस्ताव, जो कि पवित्र वचन और वचनानुसार केवल बपतिस्मे का एक ही मार्ग है। और जब ये उसके सामने रखा गया और नामधारी जानते हैं कि ये उसके हाथ से जाने वाला है, जब वो ये आरंभ करता है वे उसे अच्छे पद का प्रस्ताव देते हैं और कलीसिया में बदलाव। देखिए पुराना बालामवाद फिर से है, ठीक जैसे ये आरंभ में था। अब वो मनुष्य जो बाइबल पढ़ता है वो इसे, जब तक वो इसे देख नहीं लेता कि ये सत्य है, वहाँ कभी भी कोई उपनामों के प्रयोग के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ। ये कैथोलिक धर्मसार है और बाइबल की शिक्षा नहीं। बाइबल में कभी भी किसी का भी बपतिस्मा नहीं हुआ या अंतिम चेले की मृत्यु के 300 वर्ष के बाद तक, सिवाय यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे हुआ हो। ये कैथोलिक कलीसिया ने इसे आरंभ किया और बाकी सब इसमें आ गए, और कोई भी सेवक जो अपने अध्ययन पर बैठता है और इसे देखेगा जानता है कि ये सत्य है। परंतु लोकप्रियता, अपने पद को थामे रहना, लोगों के मध्य में अच्छे विचार, वो समझौता करता है। भाई आप कहते हैं परमेश्वर उसे आशीष दे, निश्चय ही उनमें से कुछ के पास चंगाई का वरदान है, उनमें से कुछ का महान अभियान है, और ये ठीक उनके सामने साफ हो गया, और उन्हें वही उत्तर परमेश्वर के वचन से मिला जो आप या कोई और मनुष्य पाएगा, परमेश्वर नहीं बदलता। देखिए मेरा क्या अर्थ है, बालाम उसने अच्छे पद के लिए सोचा, अब देखिए, जब वो अच्छा झुंड वापस आता है, बालाम ठीक यहाँ फोन का मूल पाठ लेता है, समझे? उसने कहा वो अच्छा झुंड वापस आता है, उसे कहना चाहिए मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें परमेश्वर का वचन बता दिया है, चले जाओ, ये यहोवा यूं कहता है। परंतु आप देखते हैं उपहार और अधिक लोकप्रिय होना, वे इसे कितना पसंद करते हैं। हम तुम्हें सारे संसार में भेजेंगे, हम तुम्हें एक विशेष जहाज देंगे, हम तुम्हारी सभाओं का खर्च वाहन करेंगे हर कहीं यदि ये तुम करोगे। ओ नहीं नहीं, ओ नहीं, समझे? हम जानते हैं कि वचन क्या कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, हम उसी के साथ रहने वाले हैं परमेश्वर की सहायता के द्वारा, समझे? कोई मतलब नहीं किस प्रकार की प्रतिज्ञा है और आप कितना भुगतान कर सकते हैं और कितना ये या वो आप कर सकते हैं, आप उत्पन्न कर सकते हैं। हम यहोवा यूं कहता है चाहते हैं, और उसने क्या कहा यहाँ पहले कलीसिया ने कहा, ये दूसरे स्थान पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने आरंभ में क्या कहा और इसमें कुछ भी मिलाया गया या इसमें से निकाला गया, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दिया जाएगा, इसमें एक भी शब्द मिलाने या एक शब्द निकालने से। हम चाहते हैं कि उसने क्या कहा, ना कि कलीसिया ने क्या कहा, डॉक्टर जॉन्स ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। हम यहोवा यूं कहता है चाहते हैं, वचन ने क्या कहा। अब हम पाते हैं बालाम परमेश्वर का दास, और बहुत से लोग आरंभ हुए और परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, और बहुत सी बातों में परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परंतु जब सच्चाई का पालन करने की बात आती है वे ये नहीं करेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के समान उसे आरंभ से ही ऐसे झुंड के साथ नहीं फंसना चाहिए था, उसे उसके साथ नहीं जाना था। परंतु देखिए, लोकप्रियता के लिए, उसके विवेक के कारण उसने कहा ठीक है, सारी रात रुके और मैं फिर कोशिश करूंगा। देखिए, मैं फिर कोशिश करूंगा। तुम क्या चाहते हो, किस लिए कोशिश? परमेश्वर उसे पहले ही बता चुका कि क्या कहना है। परमेश्वर ने कहा उन्हें बता दे कि तू नहीं जा रहा है, ये उसका वास्तविक वचन है, मैं नहीं जा रहा हूँ और तू ना जा, जिसे मैंने आशीषित किया तू उसे श्राप ना दे। अब ध्यान दें, ये उस पर कैसा उल्टा आता है, कुछ देर पश्चात देखा, और हर बार ऐसे ही होगा। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो उसका कुछ अर्थ होता है, वो इस विषय में अपना विचार नहीं बदलता, वो ठीक अपने वचन के साथ बना रहता है। कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहता है, वो अपने वचन के साथ बना रहता है। अब बालाम को अधिक अच्छा जानना चाहिए, उसे स्वयं को ऐसी संगति से अलग कर लेना चाहिए था। वे सारे अच्छे उपहार और इस राजा की प्रतिज्ञाएं, कहा तुम जानते हो मैं ये कर सकता हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी पदोन्नति कर दूंगा यदि तुम आओगे और मेरे लिए ये करोगे। और परमेश्वर ने उसे बता दिया था इसे मत कर, परंतु फिर बालाम ने कहा तुम सारी रात रुको, मैं फिर से यत्न करूंगा। देखिए, उसके पास वचन था, आपको इस विषय में और तर्क वितर्क नहीं करना है, परमेश्वर ने इसे कर दिया, ऐसा कहा। इस प्रकार के झुंड के साथ वे सदा आपसे परमेश्वर की इच्छा से बाहर बात करेंगे यदि आप उन्हें ये करने देंगे। वहाँ एक झुंड को भविष्यद्वक्ता के पास आना था, एक बार अय्यूब नाम था, वे उससे बात नहीं कर सके, उसने दर्शन देखा, वो जानता था कि वो क्या सही है। बालाम ने दर्शन देखा और तब भी इसके संग बनाना रहा। कोई मतलब नहीं उसकी कलीसिया के झुंड ने कितना कहा, ओ अय्यूब तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उससे कहा तू मूर्ख व्यक्ति के समान बातें करती है, समझी? मैं जानता हूँ कि प्रभु ने क्या कहा, मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहता है, और मैंने वही किया है। देखिए, वे उसके साथ बना रहा जो परमेश्वर ने उसे बताया। ध्यान दें, उसने बिना सरपैर का मूल पाठ लिया अपने विवेक के लिए, समझे? उसने कहा भाई मैं मालूम करूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। अब आप यहीं जहां से आप आए हैं, दूसरे स्थान पर, आज रात्रि हमारे पास कितने बालाम हैं जो बिना आधार के मूल पाठ प्रयोग करते हैं, मत्ती 28:19 का, बस अपने विवेक के लिए। कितने मलाकी 4 को अपने विवेक के लिए उपयोग करना चाहते हैं, कितने लूका 17:30 को अपने विवेक के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, कितने इन चीजों को प्रयोग करना चाहते हैं, फिर भी भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ वे सब इसमें गड़बड़ा गए हैं। और फिर यहाँ बालाम कहने लगा, यत्न कर रहा था, संभव है परमेश्वर गड़बड़ा गया, मैं फिर से यत्न करूंगा। देखिए देखिए उसने क्या कहा, अब वो आपका हृदय जानता है। ध्यान दें, बालाम ने यह आधारहीन पाठ लिया और अपने विवेक के कारण, क्योंकि वास्तव में वो उस पैसे को चाहता था, वो उस सम्मान को चाहता था, वो चाहता था, वो उस कार्य को चाहता था, वो उस पद को चाहता था कि दिखाई पड़े जैसे डॉक्टर अमुक अमुक, इसलिए उसने कहा मैं फिर कोशिश करूंगा। ओ बालाम का आज रात्रि संसार, प्रतिज्ञा किए हुए पद, लोकप्रियता, ओ प्रभु, इन्होंने अपने विवेक को इनके द्वारा सुन कर लिया है, अपने नामधारी के कारण। वे कहते हैं यदि आप ये करते हैं तो आप बाहर चले जाएं। मैं जानता हूं आप एक भले व्यक्ति हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं और वो एक भला व्यक्ति है, हम आपसे प्रेम करते हैं, परंतु आप ये प्रचार नहीं कर सकते। हमारी शिक्षा कहती है आप ये नहीं कर सकते। डॉक्टर अमुक ने इस प्रकार से कहा है, आपको इसे इस प्रकार से विश्वास करना होगा यदि आप हमारे साथ रहते हैं। अब यदि आप चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आपका समय कठिन है, भाई मैं देखूंगा, यदि मैं आपकी पदोन्नति नहीं कर सका तो हो सकता है कलीसिया बदल दूं। ओ तुम बालाम, जबकि परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, आप वही करें। परमेश्वर अपना विचार बदलने वाला नहीं। कुछ वो जो अनदेखा कर सकता, उस सत्य को उसके अधिकार के लिए उसने कहा मैं फिर से कोशिश करूंगा। ध्यान दें, बालाम वहां पर है। इसलिए अब याद रखें, जब वो दूसरी रात में आता है इस महान प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, उसका विवेक पहले ही सुस्त और सुन्न था। परमेश्वर ने उसे जाने दिया। अब परमेश्वर ने कभी अपना विचार नहीं बदला, परंतु उसने अपनी अनुज्ञा दे दी। आगे बढ़ो। परंतु उसने पाया कि ये कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर जानता था कि बालाम के हृदय में क्या था। यद्यपि वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो जानता था कि वो उन पवित्र शोर करने वालों से घृणा करता है और वो केवल वो उन्हें श्राप देना ही चाहता था, जैसे भी हो। और परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि वो ये ना करे, परंतु वो फिर भी आया और इसे फिर से करना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उसे जाने दिया। परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो। अब स्मरण रखें, उसने कभी अपना विचार नहीं बदला। ध्यान दें, ये उसकी इच्छा थी कि उन्हें श्राप दे। वे लोग जिन्हें उसने हठधर्मी गिना, वो उन्हें श्राप देना चाहता था, वो एक पद चाहता था, वो उनके संग मूर्ख नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने सोचा यदि वो ये छोटा सा कार्य राजा के लिए कर सके तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। परमेश्वर कभी अपना विचार नहीं बदलता या अपना वचन, परंतु वो आपको उसके हृदय की इच्छा देगा, आपके हृदय की। उसने ये प्रतिज्ञा दी है, आप ये जानते हैं, उसने आपके हृदय की इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा दी है। और होने पाए आपकी इच्छा परमेश्वर का वचन हो, आपकी इच्छा उसकी इच्छा हो, कभी भी आपकी अपनी इच्छा ना हो, उसकी इच्छा हो। यदि वो आप उससे कुछ मांगे, वो आपको नहीं देता, कहें धन्यवाद प्रभु, आप जानते हैं अच्छा क्या है। राजा हिजकिय्याह को ही देखें, जब उसने आपके पास भविष्यद्वक्ता को भेजा, परमेश्वर ने किया और कहा अपने घर आने को आज्ञा देनी है, वो दे, तू मरने पर है। हिजकिय्याह ने अपना मुख दीवार की ओर फेरा और जार जार रोने लगा और कहा प्रभु परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ कि मेरे लिए विचार कर, मैं तेरे सन्मुख सिद्ध हृदय से चलता रहा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन को 15 वर्ष और बढ़ा दे। ठीक है, परमेश्वर ने नबी से कहा वापस जा और उसे बता दे कि मैंने उसकी सुन ली। और उसने क्या किया, वो सारे राष्ट्र पर कलंक लाया, उसने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया जब तक कि उसे मार डाला नहीं गया। ये ठीक बात है, आप ये जानते हैं, परमेश्वर से पीछे हटा, ये अधिक अच्छा होता, हट जाता राष्ट्र राजा और सब, यदि वो आगे बढ़ जाता और परमेश्वर की पहली बात को अपने लिए लेता। परंतु ये नबी पर कठोर दृष्टि हुई जब नबी को वापस जाना पड़ा और उससे परमेश्वर का वचन बोला उसके पहले बता दिए जाने के बाद। परंतु परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो, परंतु आप देखिए ये कलंक लाया। बालाम ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा जानने के पश्चात फिर भी वो हट करता रहा, जो भी हो वो ये करने जा रहा है। और इससे क्या हुआ, ध्यान दें, उसने कभी अपना विचार नहीं बदला, वो जानता था कि उसके हृदय में क्या था। अब जानते हैं एक बार थोमा, वो इसका विश्वास ना कर सका, नहीं उसने कहा नहीं मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता, यदि मैं अपना हाथ उसकी पसली में डाल सकूं, उसके हाथों की कीलों में, मैं तभी विश्वास करूंगा। उसने कहा थोमा तू यहाँ आ, समझे, अब अपना हाथ यहाँ डाल। अब ओ, अब थोमा ने कहा ये मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर है। कहा हाँ तूने देखा और अब तूने इसका विश्वास किया, उनका बदला कितना महान है, कभी नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया। लोग कभी कभी पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि वे अन्य भाषा ना बोलें। निश्चय ही मैं अन्य भाषा बोलने में विश्वास करता हूँ, वो भला परमेश्वर है, वो आपकी इच्छा को देगा, परंतु कोई मतलब नहीं आप कितनी ही भाषाएं बोलें और उसके वचन का इनकार करें, जो भी है आप गलत हैं, समझे। देखिए आप भाषाएं बोलने पर ना जाएं, आप उसके वचन का पालन करने पर जाएं। ये पवित्र आत्मा का प्रमाण है जब आप परमेश्वर के वचन का विश्वास करते हैं। मैं भाषाएं बोलने में विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप उत्तेजित हो सकते हैं, जैसा आज प्रातः मैंने कहा जब तक आप नई भाषा ना बोलें। मैंने स्वयं और मैं जानता हूं कि ये सत्य है, मैं जानता हूं कि ये सत्य है, परंतु ये चिन्ह नहीं है कि आप परमेश्वर के चुने हुए बालक हैं, समझे, नहीं वास्तव में उसने कभी नहीं कहा। बहुत से मेरे पास आएंगे और कहेंगे प्रभु क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, ये सब महान बातें आपके नाम में नहीं की, वो कहेगा मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के कार्य करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आप अन्य भाषाओं में बातें करते हैं और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से इनकार करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ सही में, कोई भी वे बने, कोई भी वे आज्ञाएं परमेश्वर देता है वहाँ कुछ गड़बड़ है। जरा अपने विवेक में सोचो और खोजो, देखिए कि बाइबल ने क्या कहा है। मुझे एक भी स्थान पर दिखाइए जहाँ किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया था, समझे, ये वहाँ नहीं है। परंतु आप देखिए, कभी कभी आप अपने विवेक के कारण आप कहते हैं, भाई आप कहते हैं परमेश्वर स्त्रियों से बोलता है, उन्हें कैसे करना चाहिए, छोटे कपड़े आदि ना पहने। परंतु आप जानते हैं पास्टर ने कहा है, इसलिए वे इसे हल्के में लेते हैं। वे जानते हैं यहाँ परमेश्वर ने इस विषय में क्या कहा है, देखा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, इसलिए वे ये करना चाहते हैं। जो भी हो, वे बहाना खोजने का यत्न करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अधिक अच्छा है, ये नहीं, हवा नहीं चलती। जी हाँ, परंतु परमेश्वर ने पुरुष के लिए कहा है कि स्त्री से भिन्न पहने। यदि एक स्त्री पुरुष वाले कपड़े पहने, ये उसकी दृष्टि में घृणित है, इसलिए ये ठीक नहीं है। जी हाँ, आपको ये नहीं करना चाहिए, समझे, इसलिए ये गलत है। परंतु आप देखिए, वे बहाना ढूंढने का यत्न करते हैं कि प्रभु ने मुझसे ये करने के लिए कहा है। मैं नहीं कहता कि नहीं कहा, परंतु देखिए, ये उसकी सिद्ध इच्छा नहीं है, ये तो उसकी अनुमत है। आप देखते हैं ये क्या करेगा, ये तो सारे झुंड को गंदा करेगा, इसने सारे झुंड को गंदा कर दिया। यहाँ ध्यान दें, परमेश्वर ने अपना विचार कभी नहीं बदला, अपना वचन। परंतु वो तो अच्छा परमेश्वर है, वो आपको आपके हृदय की इच्छा देगा, यद्यपि वो उसके इच्छा के विरोध में होगा। आप इसका विश्वास करते हैं? देखिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा तू वहाँ पर जा, ये अभिषेक किया हुआ नबी, कहा तू वहाँ नीचे जा और उस चट्टान से बोल, ये पहले ही मारी जा चुकी है। मूसा वहाँ अपने क्रोध में गया, लाठी उठाई और बोला, तुम बलवा करने वाले लोगों, क्या मैं तुम्हें इस चट्टान से पानी दूँ? और चट्टान को मारा, पानी नहीं आया। उसने फिर से मारा, आ गया। ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, उसने बाइबल की हर योजना को तोड़ दिया। मसीह को दूसरी बार मारा जाना था, समझे, मसीह एक ही बार मारा गया था, इसने सारी योजना को तोड़ दिया, सारी योजना को तोड़ दिया। परंतु उसने उसे अपनी अनुमति बोधक इच्छा दी। तो बाद में उसने कहा, देखो हमारे पास तुम्हारे लिए पानी है, हाँ मैं तुम्हारे लिए लाया, तुम बलवा करने वाले झुंड। परमेश्वर ने कहा, मूसा यहाँ आ, मूसा यहाँ आ, ये ऊपर चोटी पर आ जा, तू वफादार सेवक रहा है, जैसे ऊंची एड़ी वाली स्त्री। आप चढ़ गए, देखा वहाँ सामने, देख प्रतिज्ञा के देश को देख, ओ प्रभु, परंतु तू वहाँ नहीं जा रहा है, तूने मेरी अनुमोदित बोधक इच्छा ली, वहाँ चट्टान पर तूने अपनी ही महिमा की और मेरी नहीं की। तू स्वयं को शुद्ध कर, तूने मुझे पवित्र नहीं किया, तूने मेरे मूल वचन का पालन नहीं किया, फिर भी पानी आ गया। तुम बीमारों पर हाथ रख सकते हो और वे चंगे होते हैं, तुम भविष्यवाणी या अन्य भाषा बोल सकते हो, परंतु बात यह है उसके मूल वचन का पालन करो। परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलता, आपको उसके कार्य अधिकार का पालन करना है, उसकी इच्छा का। ओ अरे, ये तो चेलों के लिए है, वो नहीं बदलता। यदि उसके पास अभी एक चेला है तो वही कार्य अधिकार है। सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, ये कभी नहीं बदला, वो इसे नहीं बदल सकता। अब आप कह सकते हैं, भाई मैं आपको बताऊं, ये आज के दिन के लिए नहीं है। ओ तुम बलामी, आप समझे, देखिए परमेश्वर नहीं बदलता, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। जरा इन बालामवादियों को देखो, वो मैं जानता हूँ बाइबल में उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया, परंतु सब लोगों को देखो, मैं चिंता नहीं करता कि लोगों ने क्या किया है। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे कि आप बच सकते हैं, पापों का कोई छुटकारा नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम में। क्या और कितने अच्छे हैं आप क्या करते हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये तो मूल वचन है, आपको इसी पर स्थिर रहना है, ठीक है। उसके वचन की आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। आपको स्मरण है उस समय जब शाऊल वापस आया, बालाम के पास विश्वास का वरदान था और सिद्धता से प्रयोग कर सकता था परमेश्वर का वचन। बहुत से लोग बाहर कार्य क्षेत्र में चंगाई के वरदान के साथ वही चीजें कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ बाहर अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक वरदान परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वे ये नहीं करते। वे लेते हैं और परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है जो भी है, अनुज्ञा लेते हैं केवल लोकप्रियता के लिए, और आनंद और व्यक्तिगत लाभ और अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया, जैसे एसाव ने किया, एक संस्था को बेच दिया, बालाम के समान बेच दिया, समझे। आज बहुत से वही चीजें कर रहे हैं, हम जानते हैं ये सही है, उन्होंने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। स्त्रियां पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी कर रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं, प्रचार मंच पर मनुष्य उन्हें अनुमति दे रहा है, कटे बालों वाली स्त्रियां प्रचार मंच पर हैं, चेहरों पर रंग, उस धार्मिक लबादे में कलीसिया में कभी जो सबसे बड़ी ठोकर रही वो है। यदि आप इसे राजनीतिक सामर्थ्यों में जानना चाहते हैं, युग के राज्य में ये क्या समय है, देखिए यहूदी कहाँ हैं, ध्यान दें, यहूदी कैसे हैं? क्योंकि वे लोग राष्ट्र हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि राष्ट्र कहां पर है, तो यहूदियों पर ध्यान दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि कलीसिया कहां स्थिर है, तो स्त्रियों पर ध्यान दें। स्त्रियों के बीच नैतिकता पर ध्यान दें, क्योंकि वो कलीसिया की प्रतिनिधि है। जब आप स्त्रियों के बीच गंदगी देखते हैं, तो आप कलीसिया में गंदगी पाते हैं। वो क्या हो गई? एक रंगी हुई इजाबेल, ठीक वैसे ही कलीसिया हो गई, समझे? अब ये सत्य है और आप ये जानते हैं, समझे? यदि आप जानना चाहते हैं कि कलीसिया कहाँ पर है, तो अपनी स्त्रियों के बीच में आचरण पर ध्यान दें, क्योंकि वो है, कलीसिया स्त्री है। यदि आप राष्ट्र की स्थिति जानना चाहते हैं, तो यहूदियों पर ध्यान दें। ध्यान दें, जैसा परमेश्वर ने बालाम से कहा, जब उसने सीधा सच्चा निर्णय सुन लिया था, वचन मत जा। हाँ, तब उसने उसे बताया, जब उसने उसके हृदय में देख लिया ये क्या करना था, उसने उसे अपनी अनुमति बोधक इच्छा दे दी, इसलिए उसने कहा जा। और आप भी वही चीज कर सकते हैं। यदि आप सच्चाई में चलना नहीं चाहते, आप जाकर एक बड़ी सेवकाई पा सकते हैं, निश्चय ही पा सकते हैं, परंतु आप उसकी अनुमति बोधक इच्छा ले रहे हैं, आप उसके वचन को पैरों तले रौंद रहे हैं, वो आपको आशीषित करेगा निश्चय ही। जैसा उसने बालाम के साथ किया, वो एक सफल था, परंतु वो लोगों को श्राप ना दे सका, वो ये नहीं कर सका, क्योंकि हर बार जब उसने श्राप देना आरंभ किया, उसने आशीष दी। देखिए, वो ये नहीं कर सका, परंतु जब वो अपने उद्देश्य में धनाढ्य होने को हुआ, उसने उन लोगों को सिखाया बलात् के द्वारा कि वे विचार करें। वो इसराइल के झुंड में लाया और उनका विवाह कर दिया, कहा, क्यों? हम सब एक हैं, क्यों तुम सब एक ही परमेश्वर की आराधना करते हो? हमारे पास यहाँ एक भविष्यद्वक्ता है और वहाँ तुम्हारे पास एक भविष्यद्वक्ता है, और हमारा एक ही बलिदान है, वही एक यहोवा हमारा पिता जैसा है। अब क्यों नहीं आप सब आए और हमारे साथ मिल जाएं? बाइबल ने कहा, अपने को अविश्वासियों में ना मिलाओ, उनके साथ बिल्कुल भी जुए में ना जुटो, यदि वे इसका विश्वास नहीं करते, उनसे अलग रहो, समझे? बाहर निकलो और अलग रहो, प्रभु की यही वाणी है, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, समझे? उनकी अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, ये ठीक बात है, उनकी गंदगी, वचन के विरोध में और इस प्रकार की चीजें, इससे अलग रहो, इसे ना सुनो। और यहाँ हम पाते हैं कि बालाम वहाँ गया और वो लोगों को सिखाने लगा, और उनमें एक गलती थी, और वो बालाम के मार्ग में दौड़ा, ये उसने कैसे किया, और बलात् को सिखाया और इसराइल के बालकों को व्यभिचार किया, और इसराइल के राष्ट्र पर मरी आई लोगों पर, और उनमें से हजारों एक दिन में मर गए। और जबकि वे सब वहाँ पर थे, परमेश्वर की वेदी के सामने प्रार्थना कर रहे थे, तो एक इसराइली पुरुष मिदानी स्त्री के संग आया, एक नामधारी स्त्री, और तंबू में चला गया, और याजक का पुत्र वहाँ गया और बर्छी लेकर दोनों को मार डाला, और इससे परमेश्वर का क्रोध थम गया। अब जानते हैं ये वचन है, क्या ये ठीक है, समझे? परंतु क्या घटित हुआ? बालाम इसराइल को कमजोर करने में सफल हुआ। उसने क्या किया? उसने उनके झुंड को कमजोर किया। परमेश्वर ने उसे जाने दिया और उनके झुंड को कमजोर करने दिया, और उसने सारे झुंड को दूषित कर गया। और जब कोई शिक्षा आरंभ होती है जो कि बाइबल का सत्य नहीं है, ये सारे झुंड को दूषित करता है। कोई एक भिन्न विचार के साथ खड़ा होता है, जैसे कोरा, और कहता है, भाई ये है, और दूसरा, और मेरे पास भिन्न विचार है, ये सारे शिविर को दूषित करता है। और यही हुआ जो सारी कलीसिया का शिविर आज, ये ठीक बात है, शिक्षा जैसा उसने किया, सारे शिविर को कमजोर कर दिया। उस कादेश बर्निया वचन की बल परीक्षा, जब वे कादेश बर्निया पहुंचे, तब शिविर कमजोर होना हुआ, वे वापस आए, वे पीछे निकल गए। स्मरण रखें, उन्होंने दूतों का भोजन किया, उनके पास परमेश्वर का वचन था, हर रात्रि प्रकट हुआ, और उन्होंने भोजन किया, उन्होंने चट्टान से पिया, उन्होंने सब किया, आश्चर्यकर्म देखे, उन्होंने मूसा को देखा, उसका वचन देखा, उसकी भविष्यवाणी देखी, हर चीज, और फिर अंततः उन्होंने इस झूठे नबी को सुना, उनके मध्य में आया और उन्हें गलत सिखाया, उसने शिविर को कमजोर किया और उसके द्वारा समृद्ध हो गया। उसने लाखों डॉलर की इमारतें बनवाई होंगी, हो सकता है उसके पास महान नामधारी हो, उसने हजारों हजार गुना जोड़ लिया हो और महान कार्य किए हो, और एक नबी था, ये ठीक है, परंतु जब तक ये परमेश्वर के वचन के साथ नहीं, तो अच्छा है आप इससे अलग रहें। परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलता, उसके वचन के संग बने रहें, क्योंकि यही अंत में आने वाला है, वचन वचन दर वचन। कोई भी जो इसमें एक वचन निकालेगा या इसमें एक वचन मिलाएगा, इसे तो वही वचन में बने रहना है। अब ध्यान से सुनो, जब वचन की परीक्षा आई, जब वे पहुंचे और देखा कि विरोधी बहुत बड़ा है, वो महानतम विरोधी जो उन्होंने कभी देखा, अमालेकी थे, उनके आकार से 10 गुना, और उन्होंने कहा, हम तो टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, उनकी चार दीवारें या उनके नगर इतने बड़ी दीवार से थे कि उन पर चारों ओर रथ दौड़ा सकते थे, दो रथ ऐसे कठोर जैसे कि वे हो सकते हैं, चारों ओर दीवारों से उनके नगर। क्यों? उनके भाले बड़े बड़े, वे लंबे थे और वे लंबे चौड़े थे। क्यों? हम तो टिड्डी से दिखाई पड़ते हैं, हम ये नहीं कर सकते। दो व्यक्ति उस वचन पर खड़े हुए, कालेब और यहोशू, बोले एक मिनट रुको, तुम 20 लाख लोगों, एक मिनट के लिए मुंह बंद रखो। इसके करने में हम अधिक योग्य हैं, हम उनके मुकाबले में उनसे अधिक हैं। वे किस पर आधारित थे? परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें ये देश दे दिया है, और वे वहाँ खड़े हुए। परंतु लोगों ने दूसरों के बीच में ब्याह कर लिया था और सब प्रकार के मत्सा और रीति रिवाज उनके मध्य में, और वे कमजोर से नीरस, पता नहीं कि कहाँ जाएं और क्या करें। ये ठीक बात है, यहाँ वचन की परीक्षा आ गई। फिर भी उसने अनुमति प्रदान की, आपकी इच्छा को अनुमति दे, एक बोधक अनुमति, ये जानते हुए कि आपके हृदय में क्या है, वो ये जानता है। आप कहते हैं भाई बरनम, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ये मुझे परेशान नहीं करता। परमेश्वर मुझे प्रतिदिन आशीष देता है, मैं आत्मा में गाता हूँ, आत्मा में नाचता हूँ, मैं वो अनुमति देता है, आगे बढ़ो, ये ठीक बात है। परंतु आप क्या करने जा रहे हैं? मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ और मैं ये करती हूँ, ये मुझे परेशान नहीं करता। मैं जानती हूँ मेरा विश्वास मसीह में है, ना कि जो मैं पहनती हूँ। परंतु बाइबल ने कहा इसमें कुछ है, समझे? आप क्या करेंगे और ठोकर का कारण बनेंगे, जैसे बालाम ने किया हर एक दूसरी स्त्रियों के सामने। आप अपनी युवा लड़कियों के सामने क्या करेंगे? आपके पास आवाराओं का एक झुंड होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, रंगी पुती छोटी इजाबेलों का झुंड, समझे? परंतु परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। क्यों? वो मुझे आशीष देता है, मुझे इसमें संदेह नहीं। उसने बालाम को भी आशीष दी, समझे? वो निश्चय ही वो करेगा। आप उसकी अनुमति बोधक इच्छा में चलेंगे, ना कि उसकी सिद्ध इच्छा में। परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलता, क्योंकि वो आपको आशीष देता है। उसने ठीक वहाँ इसराइल को 40 वर्षों तक आशीष दी। उन्होंने क्या किया? पत्नियाँ बेहाली, परिवार पाले, बालकों को चूमा, दहकी दी और वहाँ रहे, और परमेश्वर ने उन्हें जंगल में आशीषित किया, उन्हें मन्ना खिलाया और आदि आदि, और उनमें से प्रत्येक नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने उसकी मूल का पालन नहीं किया, अनुज्ञा, उसकी मूल इच्छा, उसका वचन, उन्होंने अनुज्ञा का मार्ग लिया। आगे बढ़ो, परंतु आप याद रखें, जब उन्होंने कादेश छोड़ा, उन्होंने आगे यात्रा ना की, वे चक्कर ही काटते रहे जंगल में। उसके पश्चात वो 2 दिन में बाहर हो सकते थे और प्रतिज्ञा के देश में हो सकते थे। उन्होंने 40 वर्ष तक यात्रा की और उनमें से प्रत्येक मर गया, सिवाय यहोशू और कालेब के, वे जो उस मूल वचन पर टिके रहे। ओ परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता, वो अपना विचार नहीं बदलता, परंतु वो आपको आशीषित करेगा। निश्चय ही उसने बालाम को आशीष दी, और उसने वहाँ पर क्या किया? उसने पूरे शिविर को दूषित कर दिया। देखिए, जो उसने कहा उस पर आपको स्थिर रहना है। उसने कभी भी अपनी मूल योजना नहीं बदली। अब आज के बालाम को कार्य क्षेत्र में देखें, क्या आप चारों ओर देखेंगे? भरपूरी भाषाओं में बोल रहे हैं, निश्चय ही लाभ के लिए, परमेश्वर के वरदान का उपयोग, हर चीज, निश्चय ही। परंतु इसने परमेश्वर की सारी कलीसिया को भ्रष्ट शिक्षा से दूषित कर दिया, ये ठीक बात है। एक ने मुझसे कहा, बोला, आप ये किस लिए कर रहे हो, आप वो किस लिए कर रहे हो? मैंने कहा, क्या विश्वास नहीं करते कि ये सत्य है? ओ हाँ, परंतु उसने कहा, क्या आप जानते हैं, ये आपका काम नहीं है, आप बीमारों के लिए प्रार्थना करें। वे आपका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं। क्यों? आप उन स्त्रियों को सिखा सकते हैं कि कैसे, और उन पुरुषों को कि वो ये कैसे करें। आप उन्हें बीज गणित कैसे सिखा सकते हैं जबकि वे अपना कह के गए भी नहीं जानते? आप उन्हें वे चीजें कैसे सिखा सकते हैं जबकि अपना प्रारंभिक भी नहीं लिया? समझे? आपको वापस आना ही है और वहीं से आरंभ करना है जहां से आपने छोड़ा, और परमेश्वर के हर वचन को लें। आज कार्य क्षेत्र में देखें, जैसे बालाम ने परमेश्वर की कलीसिया से विवाह किया, एक वेश्या, वेश्या का परमेश्वर कि कलीसिया में विवाह किया, आज ऐसे ही झूठे शिक्षक हैं आपको बताने का यत्न कर रहे हैं। वे इन हर संस्थाओं से विवाह करने जा रहे हैं, और ये लोग प्रकाशित वाक्य की पुरानी वेश्या, प्रकाशित वाक्य 17, उनकी बालाम की शिक्षा आज चारों ओर फैल रही है और कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब मसीह ही हैं, और याजक और पोप और जो कुछ भी है सब समझौता कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं। प्रचारक ने कहा, यहाँ तक कि पेंतेकोस्तल प्रचारकों को जानता हूँ, वे सब अब गोल पापड़ी दे रहे हैं, जिसका अर्थ है आस्तोरेत, चंद्र देवता, एक पापड़ी। कहते हैं आंखें बंद करो और इसे ले लो, यदि ये आपके विवेक को चोट पहुँचाता है। अपनी आंखें बंद कर लो, एक गोल पापड़ी, इसका क्या अर्थ है? हम टूटी हुई देह ले रहे हैं, यीशु मसीह टूटा हुआ, ना कि गोल, चंद्र देवता, आश्रित, जिसका स्थान मरियम ने लिया, और रोमन रोटी अब भी गोल है, चंद्र देवता के लिए, देवी ना कि देवता। हमारे पास तोड़ी हुई रोटी है, निश्चय ही। इसलिए प्रकाशित वाक्य 17 की बड़ी वेश्या, ये बालाम शिक्षक अपनी झूठी शिक्षा के साथ कलीसिया से विवाह कर रहे हैं एक प्रकार के घालमेल के साथ। ध्यान दें, जब ये अंत के समय बल परीक्षा के लिए आते हैं उसकी अब निर्बलता को देखें। 900 कुछ विभिन्न प्रकार की संस्थाएं एक एक और खींच रहा है, दूसरा दूसरी ओर, उनके बीच में कोई एकता नहीं। वे एकता लाने का यत्न कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर की मूल योजना। वे इसे राजनीति और संस्था के द्वारा ले रहे हैं। परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलता, वो ठीक अपने वचन के साथ बना रहता है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं। ये ठीक बात है, वो अपने मूल वचन के साथ रहता है, यद्यपि वे इसके विरोध में विवाद करते हैं जैसा कि उन्होंने किया। और करने के लिए केवल एक ही चीज है, वो इसे नहीं बदलेगा, बस विश्वास कर, क्योंकि आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे, उसका वचन कभी असफल नहीं होगा। समझे? अब देखिए आप कहाँ विवाह कर रहे हैं, राजनीति आदि को देखें, कैसे वे राजनीति के द्वारा कलीसिया को मिला रहे हैं। कलीसिया में हम मसीह में राजनीति के द्वारा नहीं मिले, हम कलीसिया में मिले मसीह में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। और जिस प्रकार से आप जानते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, क्योंकि वो आत्मा आप में परमेश्वर के हर वचन को सत्य प्रमाणित करता है। ये ठीक बात है, क्योंकि कोई भी जो इसमें एक वचन इसमें से निकालेगा या एक वचन इसमें मिलाएगा उसका भाग जीवन की पुस्तक में से ले लिया जाएगा, फिर भी वो फल फूल रहा है। आप कहते हैं आप इस पर फलने फूलने से विश्वास नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को समृद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। संसार समृद्ध है, बालाम इसके द्वारा फला फूला, परंतु भाई आप परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा जांचते हैं। वो अपने वचन को बनाए रखता है और इसे सत्य प्रमाणित करता है। इसलिए मित्र याद रखें, जब तक आप जीते हैं इसे कभी न भूलें, परमेश्वर अपना विचार नहीं बदलता। फिर भी वो आशीष देगा, वो आपको अनुमति बोधक में जाने देगा, परंतु वो अपना विचार नहीं बदलेगा, वो अपनी योजना नहीं बदलेगा, वो आपके लिए अपना वचन नहीं बदलेगा। नहीं श्रीमान, आपको बदलना होगा। आप परमेश्वर का वचन नहीं ले सकते कि उसमें अनुभव से मिलाएं। आपको अपना अनुभव परमेश्वर के वचन से मिलाना है, समझे? इसी प्रकार से आपको लेना है। आप कहते हैं भाई मैं अच्छा मनुष्य हूँ, परमेश्वर ये करता है, वो करता है या कुछ, परंतु क्या आप उसके वचन का पालन करते हैं? ओ भाई मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर वो आपको समृद्धि देगा, निश्चय ही वो आपको बनाएगा। नामधारी फल फूल रहे हैं जिनके पास ये नहीं है। उन्होंने अपने तंबू लगाए, महान अच्छी कलीसियाएं और सब कुछ उस देश में, वे धनी थे, पैसा आ रहा है और हर कहीं से सदस्य हैं। क्या बाइबल नहीं कहती उसमें संसार का धन मिलेगा और मनुष्य का प्राण भी, और हर चीज जो इस बूढ़ी वेश्या में मिला था, जो कि इस सारे की माँ है, राजनीति और संस्था। परंतु परमेश्वर का छोटा झुंड, उसकी दुल्हन, उस वचन पर केंद्रित हुआ। होने पाए प्रिय स्वर्गीय पिता इसे सदा वहीं स्थिर रखें। आप उस वचन से कभी ना हटें। आप आशीषित हों। आप परमेश्वर आपके रोगियों को चंगा करे, वो आपके बीमार बालकों को चंगा करे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपकी माता को चंगा करे, किसी और को। आप उसके आत्मा पर कूदें और ऊपर नीचे नाचें। स्मरण रहे, वर्षा धर्मी अधर्मी दोनों पर पड़ती है वैसे ही, परंतु जब बीज वहाँ पड़ा है या तो वो अभिषेक है या वो फिर नहीं है। और यदि ये अभिषेक है, ये हो सकता है, यदि ये गेहूं है तो इसे गेहूं ही उगना है, यदि ये परमेश्वर का वचन है तो इसे परमेश्वर का वचन ही उत्पन्न करना है, यदि ये नहीं है तो फिर ये नहीं है। समझे? अब आप इसे समझ गए। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ मैंने आपको बताया कि मैं 9 बजे छोड़ने जा रहा हूँ और यहाँ 10:20 है। आप में से बहुतों को बहुत दूर जाना है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और कारण जो मैंने आपको यहाँ पर इस प्रकार रोक रखा है, इसलिए नहीं कि मैं आपके लिए क्रूर हूँ, परंतु मैं आपसे प्रेम करता हूँ और जो मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं छिपाता, मैं आपको सत्य बताता हूँ। बाहर जहाँ मैं सभाओं में जाता हूँ, आप ये संदेश प्रचार करते मुझे कभी नहीं सुनेंगे। नहीं, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस आराधनालय में आए, ठीक यहाँ मैं जहाँ अपने संदेश से प्रचार करता हूँ, यहाँ मेरे पास 3 या 4 और हैं जो प्रभु ने मुझे दिए हैं। इस पर मेरे पास पवित्र लेख है जिसको मैं कहीं और प्रचार करने का साहस नहीं करता, केवल यहीं पर, यही जहाँ से परमेश्वर का वचन जाना आरंभ हुआ। और जब तक परमेश्वर इसे बदलता है मैं यहीं रहूंगा और यहीं पर लाऊंगा। ये ठीक बात है। बाहर की सभाओं में मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ और इस प्रकार की सारी बातें, और उधर बातों को घुमाकर कहता हूँ कि भीड़ें इसे सुनती हैं, वे जानते हैं कि किस विषय में बात हो रही है। दूसरी तरह से ये कांटे में चारा है। आप देखिए, ये चिन्ह दर्शाता है, ये दिखाने का यत्न करता है कि परमेश्वर जानता है कि विचारों के परखने में और लोगों के हृदय को जानता है, ये चीजें करता है। ये एक प्रचारक का वरदान है कि लोगों में हलचल कर दे। पहली बात आप जानते हैं, टेप उनके घरों में भेजते हैं तब वे इसे पाते हैं। यदि वो एक भेड़ है वो इसी के साथ आता है, यदि वो एक बकरी है तो वो इस टेप को बाहर कर देता है। आप देखिए ये, आप भी क्या ठीक है बेन? ये बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है बेन। बेन को कुछ अनुभव हुए हैं, ठीक है भाई, ये ठीक बात है। क्या आप आनंदित नहीं कि आप उसके हैं? क्या आप आनंदित नहीं? हम एक छोटा पेंटेकोस्टल गाना गाते थे बहुत पहले ऐसे, मैं खुश हूँ कि प्रभु मुझे बाहर ले आया, मैं खुश हूँ कि प्रभु मुझे बाहर ले आया। यदि ये यीशु के लिए नहीं होते तो मैं कहाँ होता? मैं खुश हूँ कि प्रभु मुझे बाहर ले आया। ओ मैं आनंदित हूँ जब से प्रभु मुझे बाहर ले आया, मैं खुश हूँ जब से प्रभु मुझे बाहर ले आया। यदि ये यीशु के लिए नहीं होते तो मैं कहाँ पर होता? मैं बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु मुझे बाहर ले आया। मैं चिल्ला रहा हूँ जब से प्रभु मुझे बाहर ले आया, मैं चिल्ला रहा हूँ जब से प्रभु मुझे बाहर ले आया। यदि ये यीशु के लिए नहीं होता वो मैं कहाँ पर होता? मैं खुश हूँ कि प्रभु मुझे बाहर ले आया। महिमा हो, क्या आप आनंदित नहीं? क्या आप आनंदित नहीं? आइए हम इसे गाएं।
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
क्या आप इससे आनंदित नहीं? तब हम उजियाले में चलेंगे। आप वो गाना जानते हैं?
Walk in the light, it's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
क्या आप ये पसंद नहीं करते? आइए हम इसे फिर से गाएं।
It's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Yes, Surya, up.
All ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Truth and mercy in His name, Jesus, the light.
अब आइए जब हम इसे गाते हैं तो अपने हाथ उठाएं। एक दूसरे से हाथ मिलाएं।
Oh, it comes where the dewdrops of mercy are.
क्या आप आनंदित नहीं कि आप ज्योति के संतान हैं? पुत्र ऊंचे पर है। तुम छोटे बालकों एक दूसरे से प्रेम रखो। उसके वचन का प्रकटीकरण,
जीसस द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
आप ये विश्वास करते हैं? अपने रुमाल बाहर निकाल लें, अपने रुमाल बाहर निकाल लें। एक मिनट, आइए हम प्रभु को हिलाने वाली भेंटे चढ़ाएं। ये पूला नहीं है, परंतु उन्होंने पौलुस की देह से रुमाल छुआए और आदि आदि देखा। आमीन। ओ, क्या आपको इससे अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है? मैं उन पुराने संतों की कल्पना कर सकता हूँ, वहाँ रोमन सर्कस में जाने से पहले उस पहाड़ पर चढ़ना आरंभ कर दिया। आप जानते हैं, उस छोटे ढाल पर जो सिंहों की मांद में जाता, ये कहते हुए मेरे बाद दोहराएं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे फिर प्रतिज्ञा करता हूँ, मुझे हर अधर्म से शुद्ध कर, मुझे तेरे वचन के हर संदेह से शुद्ध कर, मुझे इस ईस्टर से एक नई सृष्टि बना मसीह यीशु में, मेरे हृदय के भीतर रहे आपका वचन, ये मेरे पांव के लिए उजियाला हो जो मेरे मार्ग पर उजियाला दे। अब से मैं आपका अनुकरण करूंगा यीशु के नाम में, आमीन। क्या ये आपको अच्छी अनुभूति नहीं देता? हमने फिर प्रतिज्ञा ली है अपने हृदयों में, ये जानते हुए कि हम मरुओं में से जी उठे हैं, जीवित हैं। क्या इससे आपको अच्छी अनुभूति नहीं होती? ओ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ना खत्म होने वाले प्रेम से। सुनिए, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि आप अपने भाई से घृणा नहीं कर सकते जिसे आप देखते हैं, और कहें मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ जिसे आपने नहीं देखा। इसलिए बस एक दूसरे से प्रेम करें, तब आप एक दूसरे की सेवा करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या ये ठीक बात है? जैसा कि आप इन छोटों से छोटों के साथ करते हैं जिनमें जी उठने की सामर्थ है, तुमने मेरे साथ किया। हमने आपको कब आवश्यकता में देखा? हम आपसे कब कैद में मिलने आए? हमने कब ये चीजें की जो तुमने उनके साथ किया? तुमने मेरे साथ किया। क्या ये अद्भुत नहीं? मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं? ओ, एक और गाना हमें गाना है, यदि आपके पास एक मिनट का समय है। ओ ठीक है, हम उन्हें लेंगे। ठीक है, ठीक है श्रीमान। ओ, यीशु नाम को अपने साथ ले, इसे ना भूले मित्रों। आइए अब हम सब इसे गाएं, हर एक अब एक साथ, एक बड़े हृदय के साथ उसके पास ले जाएं। आइए, हम में वो सब है। अब इस मन रखें, मेरे लिए प्रार्थना करें, जब कष्टों की हवा बह रही है, जब शैतान हर ओर से चुनौती दे रहा है, मैं इस मन रखूंगा कि आप मेरे लिए रात और दिन प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने अच्छे पास्टर भाई नेविल के साथ बने रहें, और साथ के भाई कैप, उन्हें सुने, वे आपको जीवन का वचन सिखाएंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ, यदि मैंने ये विश्वास ना किया तो निश्चय ही मैं उन्हें यहाँ ना लेता, निश्चय ही नहीं लेता। मैं विश्वास करता हूँ कि वे संदेश का विश्वास करते हैं, और अपनी पूरी जानकारी से वे इसके साथ बने हुए हैं, और मैं इन दोनों में विश्वास करता हूँ, इनके संग बने रहें। ये दूसरे भाई लोग जो यहाँ आसपास हैं, अपनी सभा करते हैं, जो आज रात्रि यहाँ पर खड़े हुए हैं, यदि आप आसपास इनके पड़ोस में हैं, इनके साथ खड़े हों। आपने सुना है वे यहाँ किस लिए हैं आज रात्रि?
The name of Jesus save you as a shield from every snare.
इसे सुने।
Oh, when temptations round together, just breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name.
प्रिय परमेश्वर, इन लोगों को चंगा करें। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु के नाम में इसे प्रदान करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। ओ परमेश्वर हमारे साथ हो, प्रभु हमारी सहायता करें। ये मेरी सच्ची प्रार्थना है, जब तक हम फिर मिलें, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अब मैं अपने मूल्यवान भाई नेविल से कहने जा रहा हूँ, यदि वे इस अच्छी भक्त मंडली को विसर्जित करें, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को प्रेम करता है। मैं आप जैसे लोगों को पाकर धन्यवादित हूँ। मेरा संदेश क्या होता यदि मेरे पास इस पर विश्वास करने के लिए कोई नहीं होता, और यहाँ पर लोग हैं, आप इसके लिए मर जाएंगे, इस संदेश के लिए जो हमारे पास है। परमेश्वर आपकी प्रत्येक की सहायता करे। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, मेरी आशीषें आप में से प्रत्येक के साथ हैं। आप ये कभी न भूलें कि आप पुनरुत्थान का एक भाग हैं। जिला देने वाली सामर्थ अब आपके अंदर है, ये सब तय हो गया है, आप परमेश्वर के बालक हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं जब तक भाई नेविल विसर्जित न करें, और परमेश्वर आपको आशीष दे।